मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुझसे बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं, मैं सबसे ज्यादा मुतासर पता है किससे होता हूं? जब कोई आता है ना कि 7 महीने की जमात में निकला हुआ हूं, 1 साल की जमात में निकला हुआ हूं, तो दिल बाग बाग हो जाता है, जिसको कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाता है। आजकल उर्दू में तो आजकल हो नहीं रहा ना, जो भी हो रहा है इंग्लिश में ही हो रहा है, तो उनको देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वजह उसकी है कि सफर की टेंशन मैं जानता हूं कितनी होती है। मेरे लिए एक दिन घर से बाहर रहना सफर में, मुझ पर बहुत शाक गुजरता है, बहुत टेंशन होती है, चाहे कितना ही अच्छा सफर हो, यूरोप ही का सफर क्यों ना हो। वो मेरी एक तकरीर बड़ी मशहूर हो गई, मैं यूरोप गया था 1 महीने के लिए, 15 दिन में आ गया, तो बड़ी मशहूर हो गई। लोग तो जाते हैं कि यूरोप जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जाएंगे तो 6 महीने तक नहीं आने का दिल चाहता उनका। तो जाता हूं, ट्रैवलिंग बहुत करता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान को घर में सुकून होता है अपने जगह पे, क्योंकि एक रूटीन होती है इंसान की, सफर में वो सारी रूटीन आउट हो जाती है, नींद भी खराब। तो सफर एक बहरहाल एक टेंशन है। हां, जो घर से बेजार हो उसको सफर में मजा आता है, भागने का मौका मिल गया। तो क्यों बेजार है भाई तू घर के अंदर? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे घर में, मसला क्या है जो तू घर से बेजार है? अच्छा, बाज दफा मुझे पता होता है सफर में टेंशन होगी, फिर भी सफर क्यों करता हूं मैं? टेंशन उठाओ ना तो फिर घर की कदर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे जब पता चलता है ना, 7 महीने की जमात में निकला हुआ है, 1 साल के लिए निकला हुआ है, चिल्ले के लिए निकला हुआ है, तो भाई तेरा बड़ा हौसला है यार, अल्लाह के लिए अपने घर को छोड़ देना। जबकि तबलीग के सफर में तो कोई इंटरटेनमेंट है ही नहीं, इंटरटेनमेंट लेस सफर, वही 6 नंबर सुनने हैं, अल्लाह से होने का यकीन, उलमा का इकराम, इल्म और जिक्र, यही सुनना है ना उन्होंने, और नमाज पढ़नी है, दावत देनी है। दावत में भी कोई लच्छेदार तकरीरें नहीं है कि बाज खतीब ऐसी तकरीरें करते हैं आदमी कहता है करता रहे भाई तू। दावत भी सिंपल, भाई दीन आएगा मेहनत से आएगा, दीन हमारे अंदर आ जाए, पूरी दुनिया में आ जाए, इसके लिए मेहनत हो रही है। कोई लंबे चौड़े, कोई ऊट, कोई बहुत ज्यादा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अट्रैक्टिव बात हो। गई सीधी सी बात, जो पैगंबरों की दावत होती थी, नूह अलैहि सलाम ने कहा ना, रब्बी इन्नी दाउतु कौमी लैला व नहारा। नूह अलैहि सलाम जब दावत देते थे, वो बहुत टेक्निकल तकरीरें नहीं होती थी। पैगंबरों की दावतें आप कुरान में देखो, बहुत सादा थी। मुसीबत यह है कि उस सादा चीज को छोड़कर हम ज्यादा पेचीदगियों में पड़ गए। मैं जो कई हफ्तों से बयान में एक लफ्ज रिपीट कर रहा हूं ना, कुरान की जो बेसिक दावतें हैं वो तो 4-5 दावे हैं कुरान के। तौहीद है, आखिरत है, रिसालत है। रिसालत का क्या मतलब? तौहीद का मतलब जो तबलीग वाले बता देते हैं आसान लफ्जों में, एक तो तौहीद जो उलमा एक्सप्लेन करते हैं, वो तो एक मदरसों में के मा फौकल असबाब इख्तियारात, ये समझना कि अल्लाह के सिवा किसी और के पास है तो ये शिर्क है। तबलीग वाले उसको देसी स्टाइल में बयान कर देते हैं, अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से होने का यकीन ना हो। खत्म नबूवत का अकीदा उलमा जब बयान करेंगे तो थोड़ा इल्मी अंदाज से, तबलीग वाले कैसे बयान करेंगे खत्म नबूवत? तबलीग वाले ऐसे बयान करेंगे, भाई अल्लाह के हकामात को नबी के तरीके पे पूरा करना। नबी का मतलब सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका, इसके अलावा किसी और का तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते ना तो किसको फॉलो करते आज? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये खत्म नबूवत का अकीदा आ गया इसमें। तवक्कुल अल्लाह का बहुत बड़ा हुक्म है, उलमा के इस पे बयानात हैं, बिल्कुल ठीक हैं वो, लेकिन अवाम का जो सादा स्टाइल है अवाम को समझाने का, अल्लाह से होने का यकीन, गैर से होने का, कामयाबी के नक्शों में अल्लाह नाकामी पैदा कर देता है, नाकामी के नक्शों में अल्लाह, यही तो तवक्कुल है भाई। नजर आएगा नाकामी के असबाब में, लेकिन अल्लाह उन असबाब में क्या कर देगा? कामयाब बना देगा, अल्लाह के पास है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, बच गए। پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا, لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے. اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں, یعنی اسباب کی بالکل یہ نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی, دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. تو ہمارے ایک دوست سے تبلیغ میں وقت لگا کر آئے, مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ, مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا, جون پور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی, تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاد ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس, وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاد کو شرارت سوجی تھوڑی سی, انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا, کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا ان مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا, کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے. انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا, تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا, اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاد نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو, ہمیں مسالہ زیادہ لگ گیا کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ, جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں, ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا, اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے, کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں. کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو, چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو, کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ہمارے استاد نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا ہے, ان خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا, وہ فلاں نے یہ کرامت. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے, لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایسے واقعات ہیں نا, کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا, تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, کچھ نہیں جلے. تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتہ چلا جی کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑھائی میں, تو نہیں. جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑھائی جلائے گی آپ کو, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑھائی جلائے گی نہیں. اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑھائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا, اس میں کون سی بات ہے. جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا, انسان کو پھرو دیں تو بھی کیا بنے گا, تکا ہی بنے گا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا, ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں, لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا, خودکشی کا گناہ ہوگا. اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے اور خودکشی کا گناہ ہوگا. ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی اللہ کی ولی تھی, لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا, لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القا کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ فرشتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے, اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا, فلم یزیدہم دعائی الا فرارا. آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. واستكبر استكبارا. آگے کیا ہے؟ ثم انی دعوتهم جہارا. ثم انی دعوتهم جہارا. آگے کیا ہے؟ حالانکہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوں تم یہ. اعلنت لهم واسررت لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے. پہلے مٹی, پھر منی کا قطرہ بن گئے منی, پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے. یہ کیسے تغیرات ہیں, کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپرم میں, کوئی میچنگ ہے؟ اب سائنسدان تو بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے, لیکن جس کو اللہ پہ ایمان لانا ہے نا اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. یار کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپرم بننا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب چیز بن رہی ہے بالکل. اور وہی اسپرم ماں کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے. چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے, اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے ریزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں, غفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں, سبکتگین پیدا ہو رہا ہے. ریزلٹ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو اتفاق ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ابھی پھر میں ایتھیزم کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہوں, میرا یہ ٹاپک نہیں لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے, کہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں. یہ جو کہتے ہیں لا آف چانس, تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں, فی الحال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں. اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی, فروری جنوری, ہماری زبان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے. اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائرو کہتے ہیں فروری کو, یونیو جنوری کو. تو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کانٹ چھانٹ کے لیتی ہے, وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکے, اس کا تلفظ کیسے ہوگا. تو یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز اٹ از نہیں لیتی کبھی بھی, وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے اس میں قط و برید کرنے کے بعد نا اس کو کانٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے. تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے, جیسے پٹرول ہے, اب میں نے پٹرول ڈلوانا تھا, میں نے کہا بھائی اتنے لیٹر پٹرول ڈال دے, مجھ سے پیٹرول ہوتا ہے پٹرول نہیں ہوتا. اب میں نے کہا ہم لوگ کیا یہ دیکھ یہ پٹرول ہوتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے یہ پٹرول ہے. تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا, جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے. لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر, تو ایک ہے لا آف چانس, اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا. جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے, کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے, تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں. آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو, ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے, ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہا ہے, تو گڑام سے آپ نیچے گر گئے. حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی, آپ تو ویسے ہی کچھ کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا, یا کوئی کھمبا اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ کو تو آپ نے تو دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے, یہ ڈھکا ہوا ہے. تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی, لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی, آپ گر گئے. ہوتا ہے نا یار, یہ اتفاق سے کیا کہتے ہیں بھائی, یہ کیا ہو گیا, یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا, اتفاق سے ایسا ہو گیا. یہ بہت مشہور لفظ ہے, یا حسن اتفاق دیکھی ہے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آ گئے. میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا, میں سامنے سے گزر جاتا ہوں, یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی حسن اتفاق ہے بھائی آپ کا بیان سننے سے بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنے آپ کو یوں یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے, نیند تو نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے. تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی, اتفاق سے بنی ہوگی, تو پتا ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے, فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا, 10 سکے, یہ مثال بہت خاندانی ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالی 10, ایک پہ لکھا 1, دوسری پہ لکھا 2, تیسری پہ لکھا بولو 3, چوتھی پہ لکھا, ये साइंसिस्ट का नाम भी मेरे जहन से निकल गया, चार्ल्स गोए करके आ रहा है आखिर में कुछ, बीच का मुझे वो बड़ी मुश्किल उसकी बहुत ही मुश्किल से निकलता नहीं मुंह से मेरे, वो बहुत मुश्किल लफ्ज है वो। तो कभी इंशाल्लाह वो किताब सामने रखे ना, उसका नाम मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, खुद ही पढ़ लो क्या लिखा हुआ है ये। तो उसने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है कि आप एक पर्ची पे लिखें वन, दूसरी पे लिखें टू, तीसरी पे लिखें थ्री, इस तरह टेन, और जेब में डाल दें वो पर्चियां। जब आप एक हाथ डाल के एक पर्ची निकालेंगे तो इसका कितना इम्कान है कि पहले नंबर वाली वन वाली ही निकले, मिक्स भी कर दिया आपने भाई, 100-200 दफा शायद ये अमल दोहराएं, या 50 दफा या 10 दफा, तो 10 दफा में ये हो सकता है एक दफा ऐसा हो जाए कि नंबर वन वाली निकल आए पर्ची, ऐसा ही है ना। ऐसा तो बहुत ही कम चांस है इसका कि आपने हाथ डाला और पहली पर्ची निकली, है चांस लेकिन बहुत कम। फिर इसका कितना चांस है कि आप जब हाथ डाल के पर्ची निकालें तो इत्तेफाक से पहले नंबर पे पहली वाली और दूसरे नंबर पे दूसरी वाली, ये चांस और कम हो जाएगा। तो इस तरह पहले नंबर पे पहले वाली निकले, दूसरे नंबर पे दूसरी वाली निकले, तीसरे नंबर पे तीसरी वाली निकले, इसका और कम चांस होगा। यानी 100 आदमियों को आप लगा दें इस काम पे तो 100 में शायद एक ऐसा हो जिसने पहले नंबर पे पहली निकली, दूसरे नंबर पे दूसरी, तीसरे नंबर पे तीसरी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि पहले नंबर पे पहली निकले इत्तेफाक से, दूसरे नंबर पे दूसरी, तीसरे नंबर पे तीसरी, चौथे नंबर पे चौथी, पांचवें नंबर पे पांचवी, चौथी पे एक मुझे याद आया, अभी मैं जहाज में आ रहा हूं, एयर होस्टेस ने मुझे देखा ना, एक बंदे ने मुझे साथ बैठे हुए दोस्त ने बताया, एयर होस्टेस से जैसी मेरे पे नजर पड़ी ना, दूसरे बंदे से कह रही है इशारा करके कि वो बंदा इसकी कितनी है ऐसे। वो मुझे दोस्त ने बताया, कह रहा वो एयर होस्टेस, वो जो जहाज का हमला होता है ना, उन्हीं में से किसी को बता रही थी, अरे यूं करके। तो चौथे नंबर पे चार, चौथी पर्ची, पांचवें नंबर पे पांचवी, छठे नंबर पे छठी। इसके लिए वो कहता है कि 10 अरब मर्तबा, यानी 10 अरब लोग हो ना तो एक दफा ये चांस है कि इतनी तरतीब से पर्चियां निकल आए। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, 10 अरब, क्योंकि हर दफा एक एक पर्ची के आने से भी इम्कान हजारों गुना कम होता चला जाएगा। यानी ये हो सकता है कि 9 इकट्ठी 9 निकल आए, 10वीं ना निकले, दोबारा 1 या 2 निकल आए। तो आप 10 अरब मर्तबा, यानी 10 अरब लोगों को खड़ा करें और सबके साथ ये प्रोसेस, और शायद एक उसमें कामयाब हो जाए, ये लॉ ऑफ चांस के तहत। और उसने फिर आगे, ये गैर मुस्लिम साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, उसने आगे ये लिखा है कि जो सेल है ना जिससे इंसान बनता है, ये पौधे बनते हैं, ये जो एक इकाई है सेल, ये सेल भी पूरा नहीं, इसका एक मॉलिक्यूल, उसके लिए कम से कम एक के आगे आप 160 सिफर लगा दें, अरबों खरबों बन जाएगा ना, 160 सिफर। अबे नहीं समझ में आ रहा आपके, मैं क्या कह रहा हूं। 160 सिफर का मतलब पता है क्या होता है? जब एक सिफर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे पता नहीं, मुझे तो आती नहीं गिनती। तो 160 सिफर लगाने पड़ेंगे। एक सेल अगर इत्तेफाक से वजूद में आए तो कायनात की उम्र इतनी हो, 160 सिफर लगा दें तो शायद एक सेल वजूद में, यानी इत्तेफाक से हवाएं उड़े, उड़ी उड़ी, हवा भी कहां थी, रोटेशन करके एक सेल वजूद में आ जाए, एक इकाई जो पौधे और इंसान की जो भी जानदार चीज है उनकी एक बुनियादी इकाई। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, जबकि कायनात की उम्र खुद साइंसदानों के मुताबिक इतनी है ही नहीं, जमीन की उम्र भी नहीं है इतनी। जमीन तो बहुत ज्यादा 4 अरब 5 अरब साल, मुख्तलिफ जो रिपोर्टें पेश की जाती हैं, 4 अरब साल पुरानी, जबकि ये सेल जो वजूद में आए, जमीन में वजूद में आया है, ये कहीं और थोड़ी वजूद में आया है। तो इतनी इस जमीन की उम्र नहीं है जितनी लॉ ऑफ चांस के तहत आप ये फर्ज कर लो कि एक सेल ऑटोमेटिकली खुद बहुत इत्तेफाक से वजूद में आ गया हो। आगे एक सेल वजूद में आने के बाद फिर ये जो उसने इर्तिका किया डार्विन के मुताबिक, वो इर्तिका भी तो इत्तेफाकी है ना, उसके लिए तो अरबों खरबों और चाहिए। और अरबों खरबों साल चाहिए, क्योंकि फिर वो जिस सिर्फ एक सेल थोड़ी, इंसान एक सेल को थोड़ी कहते हैं, वो सेल ग्रो कर रहा है, उसमें आंख बन रही है, नाक बन रही है, कान बन रहे हैं, दिल बन रहा है, दिमाग बन रहा है, जबान बन रही है, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, घुटने, ये सारे प्रोसेस से इत्तेफाक से हो रही है। जाहिर है उसमें बहुत सारे जाया हो गए होंगे ना सेल, खरबों जाया हुए होंगे, एक ने इर्तिका करके, इवॉल्व करके अगले स्टेप तक पहुंचा होगा, ऐसा ही होगा ना। अब ये जो खुद ब खुद हो रहा है तो ऐसे ही खुद ब खुद तो फिर ऐसा ही हो रहा होता है ना। एक सेल जो है वो तरक्की करते करते थोड़ा सा एडवांस हो गया और फिर मुख्तलिफ शक्लों में वो तब्दील हो रहे हैं। एक सेल पौधों की तरफ चला गया, एक पौधे तरक्की करते करते पहला जानवर अमीबा होता था ना, वो हमने साइंस में पढ़ते थे, वो वजूद में आ गया फिर। तो इसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है इत्तेफाकी तौर पर, इम्पॉसिबल। और ऐसा उसमें डिजाइन हुआ है ना कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, वो जो सेल फर्स्ट टाइम वजूद में आया था, सही है ना, वो सेल इत्तेफाक से तरक्की करते करते खरबों अरबों खरबों 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 को खरब से जरब दें, होते होते मुफ्ती तारिक मसूद साहब बन गए और एक घंटे का बयान कर रहे हैं बैठ गए। कहते एक घंटे गए, होता तीन घंटे गए। तो ओ भाई ये बकवास है, खुदा की कसम अपनी जानों पर रहम खाओ, अल्लाह आग में उठा के फेंकेगा। अल्लाह कहेगा ये थोड़ी कि जिस साइंसदान ने उठ के जो मर्जी फेंक दी तुमने उसको इस बेस पे मान लिया कि साइंसदान कह रहे हैं, हालांकि सारे कह भी नहीं रहे, या तो इजमाई मसला होता ना साइंसदानों का, कह भी नहीं रहे, वो तो कहने की थ्योरी है, वो मे भी हो सकता है ऐसे हुआ हो। दूसरा साइंसदान कह रहे ये नहीं हो सकता, तो मान लो भाई कोई खालिक है जिसने बनाया है, और उसको किसने बनाया, वो हमेशा से है, क्योंकि वो मखलूक नहीं है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएटेड थोड़ी है। लॉ ऑफ चांस तो इस कायनात में चलता है, खालिक में थोड़ी चलता है, वो तो हमारी अकल से क्या है, बालातर है। तो खैर जो ये तो टेक्निकल स्टाइल है ना, तो तबलीग में जो अल्लाह ताला ने, जो मैं नूह अलैहिस्सलाम को बता रहा था, उन्होंने सादा सादा नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वकद खलकाकुम अतवारा, अरे भाई डार्विन को छोड़ तू, अपनी आंखों से देख, मिट्टी से। अच्छा ये जो हम जो बन के आए हैं इसमें तो करोड़ों खरबों साल भी नहीं लगे हैं, हम तो 9 महीने में मार्केट में आ गए, ठीक है ना, क्या ख्याल है। ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है मां के पेट में भाई, या उस स्पर्म में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दी अल्लाह ताला ने। ये तो मैं बार बार एक बात कहता हूं, साइंसदानों ने इंसानों को बनते हुए पैदा होते हुए देख लिया, अगर ये प्रोसेस अपनी आंखों से ना देखा होता, खुदा की कसम साइंसदान कहते ये एक इंसान जब मैं जैसे हूं ना, बनने में अरबों साल लगे होंगे तो ये बन के आया है। तो अल्लाह ने तो फौरन सूरह नूह में अल्लाह ने बता दिया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि डार्विन तो बाद में पैदा होगा मेरी औलादों में, लेकिन तुम अभी जो तुम देख रहे हो अपनी आंखों से कि मिट्टी से थोड़े दिनों में, मिट्टी से ही है ना, जो मिट्टी से हम खुराक खाते हैं वो स्पर्म में तब्दील हो जाती है, कितनी जल्दी हो जाती है यार, ये कितनी जल्दी तब्दील, 3 दिन के अंदर स्पर्म मुकम्मल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप जो भी खुराक खा रहे हैं, कितनी डिफरेंट किस्म की खुराकें खा रहे हो, आप पराठे फोड़ रहे हो, अंडे फोड़ रहे हो, कोई सब्जी खा रहा है, कोई दाल खा रहा है, हर चीज घूम फिर के बन क्या रही है, आंखों की बिनाई, कानों की समात और स्पर्म में चेंज हो रही है, जो बालिग लोग हैं, हर चीज, इतनी चीजों में 3 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। सिर्फ हमारी बॉडी को ग्लूकोज फौरन बन जाते हैं, हम जब ढीले हो जाते हैं ना तो चीनी और ये मीठा खाते हैं तो फौरन एनर्जी मिलती है, लेकिन बाकी जो प्रोटीन है या और जो हमारी बॉडी में रिकवरी होती है वो कोई 3 दिन से लेकर 10 दिन जो भी डॉक्टरों की आ रहा है वो मेडिकल साइंस की, लेकिन बहुत जल्द वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सब फिट फाट हो गए, बन ठन के तैयार 3 दिन के अंदर, ठका ठक, ऐसी मशीनरी अंदर लगी हुई है, जो मर्जी खाएगा। तभी ये ज्यादा खाने पीने को फोकस भी नहीं किया करो, ये भी ध्यान में रखो, अच्छा खाओ, बर्गर पिज्जे वीजे और ये टोपी ड्रामा चीजें छोड़ दो, लेकिन अगर आपके पास डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक खाने के पैसे नहीं है, भी कीटो डाइट के नाम पे भी लोग बहुत वहमी हो गए हैं, डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता लेकिन लोग पागल होते जा रहे हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं, इतना ज्यादा ऐसा कर लिया है ना। अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया मेरे भाई कि इसको अभी तक पूरी तौर पर समझा गया ही नहीं है। मुझे याद है बचपन में एक डॉक्टर का मजमून पढ़ा था, बड़ा जबरदस्त, उसने कहा भाई मेरे पास तो मैं गरीब आदमी, गोश्त के पैसे नहीं होते, नाम खाने के पैसे नहीं होते, और डॉक्टर ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, और विटामिन सी के लिए किलो माल्टे मैं नहीं खा सकता, उसने कहा शेर सिर्फ गोश्त खाता है, विटामिन सी भी पूरा होता है उसका, ठीक है ना, हालांकि गोश्त में विटामिन सी होता है क्या, कभी देखा सेब में इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ हुआ है, जुकाम खांसी हो रही है, तो वो संतरे का जूस बना के पी रहा है वो। सहराई लोग सिर्फ सत्तू पे गुजारा कर लेते हैं। जो गरीब इलाके हैं ना, आप अफ्रीका में जाएं और ये सहराओं में सत्तू, गंदुम का सत्तू, उसी सत्तू से सब कुछ मिल रहा है भाई। उनको ना विटामिन सी की कमी हो रही, 90-90 साल की उम्रें हो रही है उनकी। तो मेडिकल साइंस हरफे आखिर नहीं है, खुद डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो भी मानते हैं। हाँ, जब अल्लाह ने आपके पास वसाइल दिए हैं तो फिर आप सब कुछ खाएं, लेकिन नई वसाइल दिए हैं तो टेंशन लेने का नहीं है। इसी रोटी से सारी जरूरतें अल्लाह पूरी करेगा। एक डॉक्टर ने मुझे बताया, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि टेस्टों पे ज्यादा ना भरोसा किया करो, ये वाली कमी आ गई तो आदमी टेंशन में जा रहा है, देखो कुछ कुछ हो तो नहीं रहा ना, ठीक है ना। जैसे विटामिन सी की कमी आ गई टेस्ट में, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो रहा, ना नजला हो रहा है, ना खांसी हो रही, ना कुछ बीमारी हो, तो सेट है यार, होना ऐसी की तैसी, उस टेस्ट को उठा के क्या करो, बकरी को खिला दो। मुझे एस्पायलोरिया का मसला था मेरे साथ ना, है अभी भी, तो मुझे कुछ हो नहीं रहा था पेट में। मुझे एक दो डॉक्टरों ने बताया एस्पायलोरिया बहुत खतरनाक और ये कैंसर और श्यों ऐसा बना दिया। मैं गए काम से भाई, अब तो गए भाई, मरे भाई, अब तो कैंसर होने वाला है। तो डॉक्टर ने टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाया, उन्होंने कहा, फिर एक डॉक्टर ने कहा ब्लड से नहीं पता चलता भाई, स्टूल टेस्ट होगा, खान के लैब में करवाओ, वो जबरदस्त ये एस्पायल। फिर मैंने वीडियोस देखे इंटरनेट पर, वो एस्पायलोरिया ऐसा जर्सीमा जो है ना, एस्पायलोराय असल जो इसका लफ्ज है ना, बहुत बड़े एक्सपर्ट के पास में गया। उन्होंने बोला भाई क्या हो क्या रहा है, पराठे खा रहे हो कितने? मैंने कहा दो खा लेता हूं, हजम हो रहे हैं? मैंने कहा हो रहे हैं। और कहना, और क्या क्या करना है और क्या चाहिए? जब दो पराठे फोड़ रहे हो सुबह तीन अंडों के साथ, अल्लाह माफ फरमाए, नजर बस से अल्लाह बचाए, और मलाई की वो भी खा जाते हो और निहारी खा लेते हो, आपकी वीडियोज हमने देखी है, पाए भी फोड़ देते हो, और क्या चाहिए? क्या क्या कर रहा है मेरे का, और कुछ हो रहा है? मैंने कहा एसिडिटी होती है। उन्होंने कहा इसमें ये भी ना हो तो फिर क्या होगा भाई? और वो भी जब होती है जब नींद नहीं आती, नींद अगर मेरी पूरी ना हो ना, तो उन्होंने कहा नींद का तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है, टाइम नींद कंप्लीट कर लो। मैंने कहा नींद पूरी हो फिर सब, फिर नहीं होता कुछ। तो मैंने कहा ये आ खान की रिपोर्ट है, एस्पायलोराय। उन्होंने कहा भाई ये बकरी को खिला दो, ये रिपोर्ट क्या करो, ये डॉक्टर की बात कर रहा हूं, अब डॉक्टर खुद उलझे, मुझे कोई मलामत ना करे कि डॉक्टर कोई कहे कि नहीं एस्पायलोराय को हल्का ले रहा है ये। भाई मुझे वो डॉक्टर नहीं बताया कोई, उन्होंने कहा टेंशन लेने का, ये सबका ऐसा आएगा, यही आएगा, हो नहीं रहा तो क्या जरूरत है यार रिपोर्टें लेने की। तो नेट पे जब आदमी सर्च करता है ना, बावला होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, खूब समझ लो। इंटरनेट पे भरोसा ना किया करो, नेट पे सुना करो डॉक्टरों को, लेकिन अपने महल्ले पड़ोस के डॉक्टर से ना थोड़ा सा मशवरा ले लिया करो कि ये क्या है। खैर है, ये एक बीमारी है, अगर कोई इसकी जो अलामत है तो फिर इसका इलाज कराना जरूरी है, इलाज कराना जरूरी है इसका। नहीं हो रहा तो ये सब कुछ 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 ना कुछ हर वक्त बॉडी में चल रहा होता है, तो जाने दो। अच्छा खैर, तो अब क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि कोई चीज की कमी होती है बॉडी में, बॉडी खुद ही उसका मुतबादल तलाश कर लेती है। सिर्फ एक विटामिन डी के बारे में कहते हैं, वो 40 साल के बाद अगर वो कम है ना तो वो लाजमी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ हो नहीं रहा तो सब सेट है, ठीक है ना। जब तक कोई आपको महसूस नहीं हो रही ना कोई बीमारी, तो उसको टेस्टों पर ना जाओ सिवाय विटामिन डी के। अच्छा खैर, तो कहां से कहां बात चली गई, तो मैं कह रहा था इतना पेचीदा सिस्टम अल्लाह ने बना दिया बॉडी के अंदर यार, वो सिर्फ सत्तू पे पल रहा है गांव देहात का आदमी, उसकी बॉडी हर चीज कहां से ले रही है? शेर सिर्फ गोश्त से सारे विटामिन मिनरल्स पूरे कर रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको, इतना पेचीदा सिस्टम, इतना बेहतरीन निजाम। अच्छा, हम जो भी खा रहे हैं, आंखों की बिनाई भी तेज हो रही है, कानों की, जो भी सिमरा, पिज्जा बर्गर नहीं है ये ध्यान में रखो, पिज्जा बर्गर से आंखों की बिनाई तेज नहीं होती। जो मीठे लड्डू मिठाइयां फोड़ रहे हो, ये नहीं खाना शुरू कर देना कि चूंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह जब सत्तू पे एक गांव देहात के आदमी को जिंदा रख सकता है तो मुझे लड्डू पे जिंदा क्यों नहीं रख सकता? मीठा आपको बहरहाल, और ये चीनी की सूरत में जो मीठा है ये छोड़ना पड़ेगा, शहद पे आना, अगर मीठा खाना है तो शहद खाओ। अच्छा खैर, तो कुछ चीजें तो नेचुरल ही नहीं है ना, ये जो पिज्जे बर्गर और ये सफेद आटे की ये जो और मैदे वेदे, ये तो नेचुरल थोड़ी है, ये तो इंसान की खुराक नहीं, तो गोरों ने आके हमें इन फजूल चीजों पर लगा दिया। खैर, तो अल्लाह का निजाम कितना अजीब है मेरे भाई, जो भी खा रहे हैं हम, आंखों की बिनाई तेज हो रही है, कानों की समाप्त तेज हो रही है, और अल्लाह कहते हैं उससे स्पर्म बन रहे हैं, वो थोड़े दिनों में अरबों खरबों, ये लॉ ऑफ चांस के तहत हो रहा है ऐसा है भाई, اتفاق سے مانگ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں بائی چانس جو ہے وہ باپ کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ پراٹھے سے اسپم بن رہے ہیں. ہے بھائی یار اسپم کو دیکھو اور پراٹھے کو دیکھو, کوئی میچنگ ہے؟ کسی سائنسدان کے پاس پراٹھا لے, میں تو چونکہ پراٹھے کھاتا ہوں نا تو اس لیے میں وہ مثال دوں گا, ورنہ سے پراٹھے سے نہیں, اور پراٹھا بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں, اور وہ بھی ہم اسی اصول کے تحت کہ اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. کہیں تو اللہ کو الاؤ نا بھائی, اب یہ تھوڑی کہ پراٹھے چھوڑ دیں یار, ہم اتنا بھی آپ سائنس کو ڈاکٹروں کو لفٹ نہیں کراؤ. تو لا آف چانس کے تحت کیا ہو رہا ہے کہ جی پراٹھوں سے کیا بن رہے ہیں؟ اسپم بن رہے ہیں. اور اتفاق سے مرد الگ بن گیا, عورت الگ بن گئی, ایک ہی مخلوق سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ جو میں نے مثال دی تھی نا 10 سکوں والی, اس میں تو 10 ارب دفعہ یہ عمل تھا, 10 ارب لوگ کر رہے ہو تو ایک میں اس بات کا چانس ہے. یہ جو ہو رہا ہے نا اس کائنات میں, پوری کائنات بن گئی, ستارے سیارے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے تو سورج کی 10 طرف سے آزاد, تھوڑا سا کم ہو جائے تو سورج پہ جا کے ٹکرا جائے گی. ایسے بالکل لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے نا کوئی نٹ بول ٹائٹ کر رہا تھا زمین کے نٹ بول ٹائٹ کر رہا تھا, اور اس کو 23 ڈگری پہ جھکا دیا زمین کو. زیادہ بھی نہیں جھکایا, زیادہ جھکائیں گے نا یہ دن اور رات کا ڈفرینس بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اور سردی میں بہت زیادہ سردی پڑے گی, گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ گرمی. جیکب آباد والے تو ابلنا شروع ہو جائیں گے گرمیوں میں, اگر زیادہ اللہ نے یہ کر ایک خاص 23 نہ 24 نہ 22. یار ایسی ایڈجسٹمنٹ, یار ایک ہی لگ رہا ہے کوئی پلک پانا لے کے بیٹھا ہوا تھا, اسکرو سے ٹائٹ کر رہا تھا زمین کو کہ اتنا جھکانا ہے اس کو, اس سے زیادہ بھی نہیں اس سے کم بھی نہیں, اور اتنی اسپیڈ سے سورج کے گرد گھمانا ہے اس کو, نہ اسپیڈ زیادہ کرنی ہے نہ اسپیڈ کم کرنی ہے, پوری ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ تو کھربوں کو کھربوں کو کھربوں کو کھربوں سے ضرب دیں پھر بھی یہ اتفاق ناممکن. میں نے 2 ہفتے پہلے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کچرا پڑا ہوا ہے اور کھربوں سال میں اس سے ایک بوئنگ طیارہ بن کے تیار ہو گیا اتفاق سے, تو وہ جتنا امکان اس کا ہے اس سے بھی کم امکان اس کائنات کے بننے کا ہے. تو اب نوح علیہ السلام نے کیا سمجھایا, وقد خلقکم اطوارا, دیسی دلائل دیے نوح علیہ السلام نے دیسی انداز. ابے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, مٹی سے اسپم بنتے ہیں, اسپم ماں کے پیٹ میں جا کے جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے, گوشت میں آنکھیں ناک کان دل دماغ جگر لگ رہے ہوتے ہیں, پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, کیسا رو رہا چیخ رہا ہے اور آوازیں کس رہا ہے, پھر اس کی مسکراہٹ, ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے, کوئی کما کے کھلاتے ہیں, ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں, تو انسان کے لیے تو بہت بڑے بوجھ بن جاتے, کوئی نہیں پالتا ان کو. لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں, یہ اسکیم کہتے ہیں, میں یہ لفظ بھول گیا ہوں, چائلڈ اسکیما کہتے ہیں, میرا خیال چائلڈ اسکیما. یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے نا کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے, بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا, اس کے چہرے پہ, بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سے معصومیت نظر آئے گی آپ کو. خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا, کیسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کے طرف دل کھینچا چلا جائے. بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں, بڑے کی معصومیت میں, بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے. رو رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے 2 ٹپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ 2 تھپڑ لگا کے, لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا, وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا, کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں, اسی حساب سے بنائی ہیں, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے, اس کو خدمت چاہیے. کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچے, ہم بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے, بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر, کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا, بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو اس پہ انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے, بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں, وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس سٹائل کی بنا دی ہیں, ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, والقیت علیک محبتا منی, اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی, اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جا, یار اتنا پیارا بچہ بھائی اس کو قتل مت کرو, بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا. تبھی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں, اس لیے کہ یار ان کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے, بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے ان کو, وہ گدھے ہونے کی علامت ہے. چھوٹے بچوں کو مائیں بھی بہت جنگلیوں کی طرح بعض دفعہ کوٹ رہی ہوتی ہیں. غصہ شوہر پہ نکالنا ہے, نکال کس پہ رہی ہیں؟ آپ ماں ہو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ گزرتے گزرتے جب چاہو ایک بچہ گھوم جاتا ہے پورا یوں کر کے نا, اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ماں کو, یہ جو ماں ہے یہ زیادہ سمجھتی ہے. ابے ماں ہے تو خدا تھوڑی ہے, اللہ بھی ایسا نہیں کرتا یار. تو یہ جو مائیں بچوں کو دن رات پکڑ پکڑ کے بلا وجہ کوٹ پوٹ رہی ہوتی ہیں, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ماں ہے تو اب جو چاہے کر لے, نہ باپ کو اجازت ہے, نہ دونوں ایک دوسرے کو کوٹو پتا چلے یار تم اس معصوم کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے جو بےچارا کچھ. مائیں کہتی ہیں ہم پھر پیار بھی تو کر لیتے ہیں نا, بچے کے پاس آپ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, اس لیے وہ بےچارا آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا. ہم مانتے ہیں ماں جیسی محبت کوئی نہیں کرتا بچے سے, لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ بچے پہ بار بار پہ نکالو, کوٹتی رہو, چیختی رہو, چلاتی رہو, تھوڑا برداشت کرنا سیکھو. یہ نیچرل ہے بھائی, اللہ کل آپ کی ماں نے آپ کو پالا تھا تو آج آپ پالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا سا برداشت کر لیں ٹھیک ہو جائے گا. ہاں کبھی کبھار ٹھیک ہے. تو وجہ اس کی یہ کہ بچوں پہ اللہ نے ایک خاص معصومیت ڈالی ہوئی ہے. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کسی بچے کو آپ نے مارا ہو, ڈانٹنا تک ثابت نہیں ہے. انس ابن مالک 10 سال کے تھے جب ان کی والدہ نے آپ کو خدمت کے لیے آپ کے پاس پیش کیا, 10 سال نبی کی خدمت کی. فرماتے ہیں میں بچہ تھا, ایک دفعہ بھی نبی نے کسی کام پہ مارنا تو دور کی بات, کوئی کام میرے ذمہ لگایا ہو اور میں نے نہیں کیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا. تو یہ بات نہیں, بچہ ہے بھائی, بچے کا کچھ کام کر لیتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے. اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کام کا کہا نہ ہو اور میں نے کر لیا ہو تو مجھے یہ کہا ہو کہ کیوں کیا. ایک دفعہ انس بن مالک فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا کسی کام کے لیے, چھوٹے بچے تھے, کہتے ہیں میں گیا تو باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے, میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کام کے لیے بھیجا میں نے, کتنی انسان کو انتظار کی کوفت, کتنی ایسا ہی ہے جیسے ایک دفعہ میرے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے کھانا منگوایا, روٹی منگوائی, میں گھنٹہ بیٹھا ہوں روٹی نہیں آ کے دے رہی, بھائی تندور دور ہے تو بائک پہ بندہ جاتا ہے 2 منٹ میں لے آتا ہے, کتنی وہ ہے مہمان بیٹھے ہوئے. تو بندہ آیا کہنے لگا, میں نے کہا بھائی گھنٹوں میں کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں پیدل گیا تھا لینے کے لیے, تو بائک مل نہیں رہی تھی. ابھی جب تم پیدل جا رہے ہو بتا کے تو جاؤ یار, ایک گھنٹہ لگے گا پیدل آنے جانے میں. خیر رپورٹس ہیں رپورٹس, تو غصہ آتا ہے نا انسان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مصروف تھی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, انس ابن مالک شارٹ مارکیٹ سے شارٹ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے, گئے تو دیکھا کھیل رہے ہیں. انس ابن مالک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے, جب میں نے دیکھا نا پیچھے مڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا مسکرا رہے ہیں, کیونکہ حضرت انس کو تھوڑی شرمندگی ہو گئی نا کہ بھائی مجھے کام سے بھیجا, کچھ بھی نہیں کہا. تو کیسے اخلاق سکھائیں یار, اور گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ایک بچے کے ہاتھ سے مجھے یاد ہے ایک پرانا واقعہ, ایک کپ ٹوٹ گیا, 9 یا 8 9 سال کا بچہ تھا, کہیں جا رہا تھا, وہ گھروں میں ہوتا ہے نا چائے لے کے آ رہے ہیں یا کوئی ابا نے پانی منگوایا وہ لا رہا ہے, وہ گلاس ٹوٹ گیا. اب میں نے دیکھا ایک نے آ کے تانا دیا, ہاتھ ایسے ہو, یہ ہمیشہ یہی کرتا ہے, یہ ہمیشہ یوں ہی کرتا ہے, اتنا اس کو ٹارچر کر رہے ہیں یار. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا بچوں کی تربیت کریں گے یار, گلاس جان کر تھوڑی توڑا ہے, کسی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے, لا آف چانس کے تحت یہاں لگاؤ لا آف چانس, جدھر لگانا ہے وہاں لگا نہیں رہے, جہاں نہیں لگانا وہاں کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہم اتفاق سے ہم وجود میں آ گئے ہیں. ابے جب تم اتفاق سے وجود میں آ سکتے ہو تو اتفاق سے گلاس کیوں نہیں ٹوٹ سکتا میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ اور گلاس اتفاق سے جڑ جائے یہ بہت مشکل ہے, انسان جڑ کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اتفاق سے یہ پوسیبل نہیں ہے. تو گلاس ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا, بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے, اس کو سمجھا دو بیٹا تھوڑا سا آئندہ ایسے کرنا. لیکن نہیں, میں نے دیکھا ہے گھروں کے اندر بچہ جا رہا ہے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے, تھپڑ لگتا ہے, ایسے موقع پہ ڈانٹنا بھی نہیں بنتا ہے کیونکہ یہ کام کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا. ایسے موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے, ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैही राजिऊ। इसके अलावा अगर इससे थोड़ा सा भी आपका रिस्पॉन्स ऊपर का हुआ ना, इसका मतलब आप गधे हो। आप क्या हो? गधे हो। जो काम आपसे भी हो सकता है वो उससे हो गया। तो ये तो आपसे भी हो सकता है ना, कि आपसे गिलास नहीं टूटे होंगे। कितनी दफा हमसे टूटे गिलास, कितनी दफा बहुत से लोगों से बहुत कुछ टूट जाता है भाई। तो ऐसे मौके पे ये कहना कि यार ये गिलास क्यों तोड़ दिया और ये अंधा है, और फिर जो जितना गधा होगा ना, फिर उसका स्टाइल उतना ही ज्यादा होगा। थोड़ा सा गधा है यूं आंखें दिखाएगा, ये थोड़ा सा गधा। जो नॉर्मल इंसान होगा ना, मैं नहीं कह रहा बहुत बाखलाक बहुत बदतमीज ना हो, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, चलो यार ये टूट गया, एहतियात करनी चाहिए बेटा, बस। जो ज्यादा बाखलाक होगा वो तो मुस्कुरा देगा, वो कहेगा अबे भाई, हकीकत है बच्चों की हरकतों पे हंसी आती है इंसान को। बच्चे बड़ी फिल्म होते हैं, वो जानकर थोड़ी कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि हंसी इस पे आती है कि बच्चा खुद शर्मिंदा हो रहा होता है, अब डांट पड़ेगी। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे तो हंसी आती है। मेरे घर में जब बच्चे इस तरह की कोई हरकत हो जाए ना, कुछ गिर गया, यूं हो गया, मैं कोई बहुत बाखलाक आदमी नहीं, अभी आप मेरे साथ सफर करेंगे तो पता चलेगा कि कौन बाखलाक है कौन बदतमीज है। तो लेकिन ये कि मुझे बच्चों की हरकतों पर हंसी आ जाती है, क्योंकि बच्चों के ना खुद ही एक शर्मिंदगी सी हो रही होती है, उसको डर लग रहा होता है कि पता नहीं मैंने क्या किया है। तो ऐसे मौके पे हंसी आनी चाहिए, गुस्सा ऐसे मौके पे बिल्कुल भी नहीं बनता। और फिर जो जितना बड़ा गधा होगा, तो मैं दो चार गधों की मिसालें दे दूं ताकि सामने आ जाए ना, तो थोड़ा सा गधा यूं आके दिखाएगा, यूं करूंगा ऐसे, इसका मतलब आप में गधे के थोड़े से जरासीम हैं। आंखें दिखाना बनता नहीं है। आप कह सकते हो जब तक हम तंबी नहीं करेंगे तो गिलास पकड़ना कैसे सीखेगा, तो तंबी के लिए आंखें दिखाने की क्या जरूरत है? जानकर थोड़ी किया उसने, आप उसको बता दो बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं आगे पीछे। वैसे तो वो जब टूटेगा ना गिलास, उसको खुद भी तो कुछ सीखेगा ना, वो खुद भी तो कुछ इस वक्त उसको अखलाक सीखने की ज्यादा जरूरत है। अगर आपने डांटना और ये सब चीजें शुरू कर दी तो बदअखलाकी सीखेगा, जो गिलास तोड़ने से बचने से ज्यादा सीखना जरूरी है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। देखो आपने उसको अखलाक भी तो सिखाने हैं ना, तो अखलाक तकरीरों से नहीं सीखेगा, वो देखेगा कि मुझसे गिलास टूटा और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा के चल दिए, ठीक है ना। ये जो चीज मैसेज मिलेगा ना, उसको लगेगा कि हमारे घर का ये माहौल है कि हमारे घर में जरा जरा सी बातों पे चीखते चिल्लाते नहीं है, ना मार धाड़ की धमकियां देते हैं, ना दांत तोड़ने की धमकियां, ना जबान कैंची से काटने की धमकियां, क्योंकि ऐसे धमकियां आ रही होती हैं, तेरी जबान प्लास्टर निकाल दूंगी मैं, और मैं कह रही होती है ना गड़ा मार दूंगी मैं तुझे। बाप भी ऐसे ही कर रहा होता है, मां भी ऐसे ही कर रही होती है। तो ये जो बदतमीजी सीख रहा है ना घर में, ये बहुत डेंजरस है भाई। गिलास तो कोई बात नहीं यार, दूसरा गिलास ले आओ। तो अपने अपने स्टाइल से आपने बच्चे को अखलाक सिखाने होते हैं। अगर आपका स्टाइल ही गधे वाला है तो कुछ आंखें दिखा रहे होते हैं, कुछ तो थप्पड़ लगा देते हैं रख के, ये तो बहुत ही गंदी हरकत है यार। आपने गिलास तोड़ने पर चांटा लगा दिया, उससे पता है क्या होगा, जब दूसरा घर में छोटा कोई उल्टी सीधी जरा सी भी हरकत की तो ये भी चांटा लगाएगा चपेट के। फिर आप बोलोगे ये क्या है भाई, तुम्हारे हाथ क्यों चल रहे हैं, इतनी सी बात है थप्पड़ क्यों लगाया? तो उसकी समझ में आएगी ये बात, उसके दिल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं कि इससे कम बात पे मेरे अब्बा ने दो थप्पड़ लगाए थे, मैंने तो अभी कितने थप्पड़ लगाए हैं, एक थप्पड़ लगाए, उसमें बर्दाश्त खत्म। तो बदतमीजी वाला माहौल घर में इसी तरह ही पैदा होता है। तो ये गिलास टूट गया, ये छोटी मोटी हरकतें, हम तो इतने शरारती थे यार, अब तो बच्चे शरारती हैं ही नहीं। हम तो मस्जिदों में अल्लाह माफ फरमाए, ज्यादा नहीं बताना चाहिए, ऐसा ना बच्चे सीख लें ये चीजें। पहले जमाने के बच्चे देखो ना, घंटियां बजा बजा के, वो बच्चा ना यूं घंटी बजाने की कोशिश कर रहा, हाथ नहीं जा रहा था उसका, एक अंकल आए उन्होंने बजा दी, तो अंकल ने फिर बच्चे से पूछा अब क्या करने, कह रहा भागो। बच्चे तो ऐसे, मैं फिर भी इसका कायल नहीं हूं कि बच्चों को किसी चीज पे डांटा ही नहीं, कुछ चीजों पे डांटना पड़ता है। जैसे बड़ों के साथ बदतमीजी कर रहा है तो एक दो दफा मोहब्बत से समझाओ, नहीं कर रहा तो फिर सख्ती से समझाओ उसको। बात चीजों पे तो डांटना भी, और इस्लाम ने फिर मारने का भी हुक्म दिया बात चीजों पे। तो इतने ब्रॉड माइंडेड ही बन जाए कि कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन किन बातों पे कहना है ये तो पहले सोच लो ना। आप जिन बातों पे उनको डांट रहे हो, वो डांटना बनता नहीं है, फेल हो जाने पे भी नहीं डांटना बनता। बच्चा फेल हो गया और आप डांट रहे हो, ये पास नहीं होगा, ये जहन में रख लो। अपनी मर्जी से पढ़ता है आदमी, गन पॉइंट पे पढ़ सकता ही नहीं है। मेरे मां बाप ने मुझे पढ़ाने की कोशिश की स्कूल में, मैं नहीं पढ़ के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कितना फजल हो गया, ठीक है ना। मैं नहीं पढ़ के दिया भाई, हमारे शरारतों में दिल लगता था, हमारा दिल ही नहीं लगता था स्कूल में पढ़ने में यार, शरारतें हैं, वो खिड़की से भाग रहे हैं, फिर यहां से निकल रहे, यहां से टन मारा, वो तो वो नहीं दिल टिक, जो जहीन बच्चा होता है ना उसका दिल टिकता ही नहीं है किसी जगह, उसको थोड़ा मिचोर होने दो तो जब उसको अच्छा बुरा समझ में आएगा तो वो जब पढ़ाई पे आ गया तो रिकॉर्ड तोड़ देगा वो। हम जब मदरसे में गए तो हमने सही तरह से पढ़ना, शौक से गए थे ना, पढ़ना शुरू कर दिया। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को बिल्कुल आजाद छोड़ने, पढ़े नहीं पढ़े, ना ना ना, स्कूल भी भेजें, ट्यूशन भी पढ़ाएं, सब कुछ है, निगरानी करें, बस ये काफी है, इससे ज्यादा कि आप मुकल्लफ नहीं है। अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग कहते हैं आपने अपने बच्चों को आलिम क्यों नहीं बनाया, स्कूल क्यों, मैट्रिक के बाद आलिम बनाते हैं, मैट्रिक से पहले कोई मदरसा नहीं लेता। तो मेरा इरादा है अच्छा आलिम भी उस बच्चे को बनाऊंगा जिसमें देखूंगा कि अपना भी शौक है या नहीं है, गन पॉइंट पे कोई किसी को नहीं बनाने का इरादा नहीं है कि सर पे मुसल्लत होकर बंदूक रखी हुई है तू ये पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ रहा तो कैसे चलाओगे आप। कुछ होते हैं जबरदस्ती भी पढ़ लेते हैं लेकिन मेजोरिटी नहीं पढ़ पाती। मोहब्बत से समझाऊंगा देखो इसके ये फायदे हैं, क्योंकि बच्चे को आलिम बनने में ना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा होता अपना, मुस्तकबिल उसको दूसरे कामों में नजर आ रहा होता है, तो उसमें आप गन पॉइंट पे मुसल्लत कर दोगे बड़े मसाइल हो जाएंगे। तरगीब से मोहब्बत से समझा दिया चला गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर अगर दिल नहीं लग रहा तो मोटिवेट करते रहेंगे। जैसे मेरा भी दिल नहीं लगता था तो हमारे उस्ताद हमें समझाते थे, फिर हम बैठ जाते थे चलो यार, फिर दिल भी लगना शुरू हो गया। तो ऐसे है, इन चीजों में आपने स्कूल में दाखिल कर दिया। हाँ, अब स्कूल में बिला वजह टुल्ले मार रहा है, छुट्टियां कर रहे हैं तो सख्ती बनती है बेटा, रात को जल्दी देखो पहले वजह क्या है, नींद पूरी नहीं हो रही तो जल्दी सुला दो रात को उसको, तो इस तरह से तो सख्ती की जाएगी। आगे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे भाई, हर आदमी का एक जैसा जहन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग दुनिया में गुजरे हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी, आप बड़े बड़े साइंसदानों को उठा के देखेंगे ना तो अक्सर स्कूल से भागे हुए होंगे वो। अब बच्चे भागना ना शुरू कर दें इस चक्कर में कि हम बड़े साइंसदान बनना चाहते हैं, तुम छोटे भी नहीं बनोगे, तुम पंचर लगाना भी नहीं सीखोगे, तो इसलिए पढ़ लो ज्यादा अच्छी बात है, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा इससे। तो इसमें भी फेल हो गया बच्चा, उस पर इतना जहनी दबाव यार, इतनी टेंशन के मुसीबत में पड़ जाता है वो। तो ऐसा मत करो, बच्चे को दिमागी तौर पे ग्रो करने दो, जितना खुश हंसी खुशी जिंदगी, थोड़ी बहुत टेंशन है वो अखलाक सिखाने वाली तो देनी है, नमाज वाली टेंशन, और ये चोरियां चुकारियां ना शुरू करते, गाली ना देना शुरू करते, गाली दे रहे सख्ती करो उसके ऊपर भाई, ये गाली वाली नहीं चलेगी। छोटे भाइयों को बिला वजह मारता पीटता है तो उसको समाओ, या इंसान के फिरौन के बच्चे मत बनो भाई, जो तकब्बुर और ये सब चीजों का तो कंट्रोल करो, बाकी चीजों में भाई पढ़ रहा है अच्छी बात है, फेल हो गया कोई बात नहीं, उसको मोटिवेट करो कोई बात नहीं बेटा, अगली दफा इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे, सल्लू अलैल हबीब कह दिया करो। मेरे दो भांजे हैं ना, ये नंबर कम आए थे, बल्कि शायद एक फेल हो गया था, तो चूंकि वो हमारे बहनों ही हमारे ही दोस्त हैं बचपन के, बयानात एक ही शेख से हम बैठ थे, तो हम दोनों में सॉफ्टवेयर एक जैसे इंस्टॉल हुए हैं, तो वही हुआ बच्चे जो फेल हो गया, तो घर में जब इत्तला मिली बच्चे थोड़े से घबरा रहे थे हम फेल हो गए तो पता नहीं क्या होगा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, आखिरत के इम्तिहान में फेल नहीं होना बस बेटा, दुनिया में फेल पास चलता रहता है, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़े जब समझदार हुए तो खुद ही अकल आई, भाई बातें मामू से हम चार शादियों की सुनते हैं, तो फेल होके तो चार शादियां नहीं हो सकती, तो कुछ करना पड़ेगा भाई, खुद ही समझ में आया। अब एक एनडी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बन गया है, दूसरा मदर जामित रशीद में अपनी मर्जी से गया है, आलिम बन रहा है माशाल्लाह। तो बुरे माहौल में नहीं बैठने दो, खैर आज खिचड़ी पक रही है, टॉपिक दाएं में बहुत ज्यादा जा रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, खलकाकुम अतवारा, कैसे अल्लाह ने मुख्तलिफ तौर बतौर तुमको पैदा किया है, एक स्टेप से दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, फिर पैदा जब बच्चा हो जाता है तो उसके चेहरे पे अल्लाह ने मासूमियत डाल दी, ऐसी हरकतें कर रहा होता है, मां बाप को प्यार आता है उसके ऊपर, वो एक एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन जरिया बन जाता है। तो ये सारी चीजें भाई ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ चांस के तहत नहीं है, ये सब कौन कर रहा है, कोई जात है जिसने ये सारा निजाम बनाया। तो मैं तबलीग की बात बता रहा था कि ये जो दो तीन बेसिक चीजें हैं ना, तबलीग वाले इसी को पूरी दुनिया में लेके चलते हैं, ये बेसिक है, अल्लाह से होने का यकीन आ जाए और अल्लाह पे एतमाद आ जाए, अल्लाह पे तवक्कुल आ जाए। मैंने तबलीग वालों को नहीं देखा कि वो जब कोई मुसीबत आए ना तो वजीफों में लगे हुए हों, क्योंकि अक्सर ये वाकया बताया जाता है भाई दो रकत सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से मांग, मेरे वाले साहब तबलीग में लगाते थे ना, कोई परेशानी आती दो रकत पढ़ के अल्लाह से मांगते थे। ये सलातुल हाजत के नाम से कोई हदीस में नमाज नहीं है, लेकिन नाम देने में कोई हर्ज नहीं है। हदीस में आता है जब भी किसी को कोई मुश्किल हो ना, दो रकत पढ़ के अल्लाह से मांगे, तो उसका नाम बाद में आसानी के लिए सलातुल हाजत रख लिया। तो ये चीज नजर आएगी आपको तबलीग वालों में। अच्छा, तबलीग वाले बिदत के खिलाफ ऐसे बयान नहीं करते कि तीजा गलत है, चालीसवां गलत है, फलाना गलत है, ढिमकाना, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन मैंने देखा जो तबलीग में वक्त लगाते हैं, ऑटोमेटिकली तीजे चालीसवें उनकी जिंदगी से खत्म, ऑटोमेटिकली बगैर किसी तकरीर के। क्योंकि मिजाज ये बन जाता है भाई, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों पर पूरा करना है। अब उन ये तो सबको पता है, नबी ने तो तीजा नहीं किया, नबी ने तो चालीसवां नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे काम मौजू बना के नहीं होते खुद बहुत। एक चार शादियों वाला रह गया तबलीग में, उस पर पता नहीं कब आएंगे वो लोग। खैर, एक आलिम ना एतराज कर रहे थे तबलीग वालों पर, मेरे शेख हैं हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उनके पास बैठ के, कि हजरत ये रायवंड में सारे उलमा को क्यों बयान नहीं करने देते, रायवंड के स्टेट से फलाने को बुलाएं, ये सिर्फ उन उलमा को बयान करवाते हैं जिनका तबलीग में वक्त लगा हुआ है। तो हमारे उस्ताद उनको समझा रहे थे, भाई एक नेटवर्क है, एक तरीका है, तो उसमें जाहिर है जब तक एक उनकी पॉलिसी है कि इस से गुजर के नहीं जाएगा तो उस काम की नौयत समझेगा नहीं। तो कहना नहीं, इतने बड़े बड़े उलमा, भाई बड़े बड़े उलमा हैं, वो अपने मेंबर पे सही काम कर रहे हैं, लेकिन तबलीग का एक खास तरीका है जो तजर्बों के बाद उनको अंदाजा हुआ। तो अब जब तक कोई कोई इस तजर्बे से नहीं गुजरेगा तो उनका एक निजाम बना हुआ है भाई, वो जैसे खानका में भी हर एक को थोड़ी बयान करने दिया जाता है, हर एक का अपना एक स्टाइल होता है। जब उनको बहुत समझाया उनकी समझ में नहीं आया, तो फिर हमारे उस्ताद ने कहा अच्छा मुफ्ती तारिक मसूद को रेवंड में एक बयान दे दो, चार शादियों में बयान कर दिया, हजम हो जाएगा लोगों से। मैंने कहा, उन्होंने कहा ये बंदा तो वहां जाके क्या करेगा, साल साल की जमातें आई हुई हैं, अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क और अंग्रेज आए हुए हैं, जैपनीज आए हुए हैं, एकदम बयान नए नए मुसलमान आए हुए हैं जो अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, और एकदम बयान किस पे शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये तो अजीब सही नहीं हो, बात तो सही होगी लेकिन बेमौका होगी। फिर वो साहब खामोश हो गए, उन्होंने कहा ये मिसाल आपने बिल्कुल सही दी है। तो उनका प्रोसेस है भाई, इतना टाइम गुजारो इस काम को समझो, तो आप अपने मेंबर पे जो भी हैं, लेकिन जब आप तबलीग में निकलेंगे तो आपको इससे दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। तो तबलीग में जो है ना, जो वक्त लगाते हैं, मुझे बड़ी उस पर होती है कि भाई ये इस्लाम के जो बेसिक चीजें हैं, और किसी इख्तलाफ और तंज के बगैर तौहीद पर बयान होगा, मुशरिकों पर तंज नहीं होगा, बिदत के खिलाफ बयान होगा, बिदतियों पर तंज नहीं होगा, और खत्म नबूवत पे बयान होगा, खत्म नबूवत के मुनकरीन पे तंज नहीं होगा। जो कर रहे हैं वो एक अलग फील्ड है, मैं उसकी जो उलमाए खत्म नबूवत जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा काम है, तो तबलीग में किसी शोबे की नफी नहीं होती। मैं तो सिर्फ तबलीग का मिजाज बता रहा हूं कि काम सारे हो रहे हैं लेकिन नाम नहीं है, ये बहुत मजबूत बुनियादों पर काम हो रहा है। और कितनी बड़ी कुर्बानी है, मैं मिसाल दे रहा था ना यार, हम तो जब सफर में जाते हैं हमसे तो दो दिन नहीं गुजारे जाते, इतनी टेंशन होती है, वह भागो तो एक एक साल के लिए निकल जाना, सात सात महीने के लिए, छिल्ले के लिए, सहरोजे के लिए, और कोई इंटरटेनमेंट कोई है नहीं वहां पे, वही बयान हो रहे हैं, वही एक साहब खड़े हो जाएंगे, एक रक्षे वाला खड़ा हो जाएगा, भाई अल्लाह से होने का यकीन आ जाए, गैरुल्लाह से ना होने का यकीन आ जाए, एक रक्षे वाला, फिर बयान आप कभी किसका, ऐसे लोगों का बयान भी जिनकी जवानी समझ में नहीं आ रही होती आपको, तो ये बड़ी कुर्बानी की बात है। इसलिए कोई तबलीग वाले मिलने आते हैं तो मैं उनसे दुआ का कहता हूं, भाई हमारे लिए भी दुआ करो, क्या ख्याल है, क्योंकि बड़ी कुर्बानी है। तो बयान सारा आज मेरा इस तरफ निकल गया, अब मैं असल टॉपिक की तरफ जल्दी से आता हूं। ये जो हमने सालम बियाजाबी वाकई पढ़ी है ना, तो वही बात है कि कुरान के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनमें एक आखिरत है। बार बार अल्लाह कहते हैं मर के खत्म नहीं हो जाओगे भाई, तुम्हें दोबारा जिंदगी मिलेगी, अल्लाह के सामने तुमने जवाब। अच्छा, तबलीग वालों की थोड़ी मैंने वो कर दिया, तो एक एक अहम बात देखो, तबलीग में जो वक्त लगा के उलमा से ताल्लुक रखे ना, उसके काम में निखार पैदा होता है। तबलीग में बात सिखाई जाती है, फजाइल का इल्म फजाइल के हलकों में, मसाइल का इल्म उलमा के पास। अगर तबलीग में जो वक्त बहुत लगाए उलमा से कट गया, उसमें गुमराही का खतरा होता है। और ये बात मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले लिख दी थी, फरमाया दो काम अगर तबलीग में कमी हो गई ना उनकी, तो ये बहुत बड़ी गुमराही बन सकती है, एक जिक्र की कमी और एक इल्म की कमी। दोनों में से इल्म आगे, अगर जिक्र की कमी हो गई तो इखलास खत्म हो जाएगा। जब आप जिक्र छोड़, तभी तबलीग में जब गश्त के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों को जिक्र के लिए लाजमी बिठाते हैं, जिक्र की कमी हो गई अल्लाह से ताल्लुक खत्म, इखलास खत्म, फिर शोबाजियां, फिर शौक होगा कि मेरा बयान क्यों नहीं हो रहा, भाई महल्ले का अमीर मुझे क्यों नहीं बनाया, तो ये चीजें जिस तहरीक में आ गई ना, मैं पैदा हो गई तो खत्म। तो जिक्र की तो अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है, लेकिन इल्म में बाज लोग जब जाते हैं तो फिर उलमा से ताल्लुक खत्म कर देते हैं, तो उनके फिर बिगड़ने का अंदेशा होता है, क्योंकि इल्म और जिक्र ये दो चीजें इंसान को गुमराही से बचा। खाली इल्म और जिक्र ना हो तो वो भी अल्लाह से ताल्लुक खत्म। फिर वो इल्म तो फिर आपको पता है आजकल जितने गुमराह स्कॉलर्स आ रहे हैं इनके पास इल्म तो बहुत है, अल्लाह से ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है, तो गुमराही का जरिया बनते हैं। और अगर सिर्फ जिक्र ही जिक्र हो, इल्म ना हो, तो वही पादरी की मिसाल हो जाएगी कि जिसने 100 इंसानों को, एक शख्स ने 99 इंसानों को कत्ल किया, पिछली उम्मतों में एक अल्लाह वाले के पास गया, तो अल्लाह वाले के पास जिक्र था, इल्म नहीं था। तो पूछा कि मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उन्होंने कहा था एक दो बंदे मारे होते तो बात है यार, 99 बंदे मार के आ रहा है भाई। अल्लाह से ताल्लुक तो उन बुजुर्ग का बहुत कवी था, इल्म नहीं था कि भाई हजार भी कत्ल की हो तौबा का दरवाजा मौत से पहले पहले खुला हुआ है। तो उन बुजुर्ग ने कह दिया कि नहीं भाई, 99 की तो तौबा कबूल नहीं होती, बुखारी की हदीस है। उन्होंने कहा जब नहीं होती तो सेंचुरी पूरी क्यों ना करे भाई आदमी, जाना जब जहन्नम में ही है तो पूरी सेंचुरी करके जाओ ना, वो जहन्नमियों से मुलाकात होगी तो पता तो चलेगा, जैसे जेल में जो कैदी जाते हैं ना, तो बता रहे होते तू क्या मार के, वो कह रहे मैं मच्छर मार के आया हूं, तो तूने कौन सा तीर मार लिया यार। तो उसने उस पादरी को भी मार दिया कि यार पूरी सेंचुरी पूरी करो। फिर हदीस में आता है, उसको फिक्र हुई कि किसी और से पूछें, तो फिर हदीस में आता है दुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, पहले लोगों ने राहिब का, राहिब जो उनके बुजुर्ग हुआ करते थे ईसाइयों के, सही बुखारी की हदीस है, फदुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, किसी ने बनी इसराइल के आलिम का पता बताया, वहां एक आलिम है, जब वो आलिम के पास गया और कहा कि मुझसे 100 इंसानों का कत्ल हो गया है, हल लहू मिन तौबा, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा? तो वो वाकई इल्म में मजबूत थे, उन्होंने फरमाया मैं ये होलू बई नहू बई न तौबा, सिर्फ मसला नहीं बताया कि हाँ कबूल करेगा, बल्कि अप्रिशिएट किया, भाई क्यों नहीं करेगा, तेरे और अल्लाह के दरमियान कौन रुकावट बन सकता है। और फिर उसको गाइड भी किया कि जिस इलाके में तूने कत्ल करना सीखा है तौबा कर तो लेगा, तौबा पे कायम रहेगा नहीं, इन तलिक इला अर्दिन कदा व कदा फैन बिहा उना सयाबुदून अल्लाह फाबुदिल्लाह माउम, इस इलाके को छोड़ दे भाई, वहां अल्लाह वाले लोग रहते हैं, वहां उनमें जाके रह ले और वहीं अल्लाह अल्लाह कर, यहां ना आना इस इलाके में, तौबा वहां जाके करना। फिर वो जो उसकी मौत आ गई उसी दौरान और अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल, हालांकि भी तौबा की नहीं थी, तौबा के इरादे से चला था, तो आलिम के पास गया ना। अब अगर वो आलिम आलिम होता, अल्लाह वाला ना होता, यहां तो मैंने बताया ना वो राहिब बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, इल्म नहीं था, उन्होंने भी गुमराह किया, और वो आलिम जिनके पास गए वो बुजुर्ग भी थे आलिम भी थे, अगर सिर्फ आलिम होते बुजुर्ग ना होते वो, तो वो भी गुमराह करते। फिर पता है क्या करते, इस जमाने का कोई स्कॉलर होता ना पढ़ा लिखा, तो जब कोई 100 इंसान कत्ल करके उनके पास आता तो वो कहते भाई हदीस नंबर फलानी से पता चलता है कि तौबा कबूल हो जाती है, लेकिन अल्लाह वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने बुजुर्ग आ रहे हैं ना मंजन बेच रहे हैं ये, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, ये जितने बुजुर्ग बुजुर्ग जो आजकल टोपियां पहन के घूम रहे हैं, जो अल्लाह अल्लाह सिखा रहे हैं, उनकी सोहबत में जाके तुम बैठोगे, अब सब दुकानें हैं, सब क्या है मंजन, ठीक है ना, बुजुर्ग बुजुर्ग कोई भी नहीं है भाई, वंस अपॉन अ टाइम अल्लाह वाले हुआ करते थे सब, मैं सही हूं, सिर्फ मैं सही हूं, लिहाजा आप सिर्फ मेरे साथ रहा करें और दाएं बाएं जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आलिम तो होता लेकिन इसके अंदर हुब्बे जा के लोगों को अल्लाह वालों से कटा के सबको अपनी अपनी जात के गिर्द जो इकट्ठा करना चाह रहा है वो आलिम तो हो सकता है, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते? तो जो भी ये चाह रहे हैं ना कि सब मेरी तरफ आ जाएं, ये हुब्बे जाह का मरीज है, तकब्बुर का मरीज है। उलमा में तवाजो होती है, हमने तो देखा है, हमने किसी आलिम से मसला पूछा, उनसे सीनियर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई उनसे पूछो, जब बड़े बैठे हैं तो हमसे क्यों पूछ रहे, हम तो छोटे लोग हैं। ये हमने उलमा जो सही अहले हक उलमा उनमें ये तवाजो देखी है। और आजकल दो चार बातें जिसको मालूम हो जाए तवाजो वहां से शॉर्ट, वो तकब्बुर का पोटला बन जाता है, मैं बस वो ये शुरू कर देता है, सब उलमा से कटाना शुरू कर देगा आपको, तो ये इसी सही नहीं है। तो आलिम भी हो और अल्लाह से ताल्लुक भी हो, तो नूह अलैहिस्सलाम ने यही समझाया। तो अल्लाह ताला ने सूरह ये मारिज में जो है ना, बस मैं आयतें अगले हफ्ते में अगली आयतों से दर्श शुरू करूंगा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी, तुम्हें अल्लाह के सामने हिसाबो किताब देना है, तो वही मशहूर सवाल था सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग आपसे पूछते हैं वो कब वाक़िअ होगा, जो अज़ाब वाक़िअ होने वाला है उसके बारे में एक साइल ने पूछा। अल्लाह फरमाते हैं वाकई कब होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा उसूल ही नहीं है कि मैं कयामत का इल्म बता दूं, लेकिन इतनी बात है लिल काफिरीन लैस लहु दाफे, जो भी अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह को नहीं मानता, اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا, جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں, کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا, تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا. اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم اروا میں ہو, 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا, تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی, جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا, کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا, جو ایک وقت کی اکائیاں ہیں, وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہیں نا, وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے, وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا, وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں, 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند, گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم اروا کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ, تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہیں. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا, تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نہ حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے, ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے, لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا, جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے, یہ 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے, بالکل قریب ہے, تو زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات سے جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو, تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ وہ مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو؟ تو تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں نا ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے, ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کھینچی, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے, اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, چار شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں, اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائے, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا بھی, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر, لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے, اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا, ان خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھسا ہے وہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو دو چار لائٹیں تھیں چرسیوں نے چوری کر لی, اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہے جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا, سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کا, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے بس سرکٹا آیا بھائی یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو یہاں چلے جاؤ, رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر ایک گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے, 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو ایک گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے ایک دفعہ چلے جاؤ بس, رات میں 2:30 بجے ایک دفعہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, چار شادیوں والے بھی تھے, ایک والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30-30 سال کے بھی تھے, 15-15 سال کے بھی تھے, 6-6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, قبریں جا کے دیکھو. کل حوث اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے حوث جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی, حوث نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی, کہ یہ سکندر ہے وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سننے ہوئے اس کو, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ حوث مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور नाइट क्लब जाएंगे, शराबें पिएंगे और ये कुछ करेंगे। कह रहे हैं एक दिन क्या हुआ, मुझे जो है कब्रिस्तान से मेरा गुजरना हुआ, तो मुझे जो है ना मेरी हवस ने जो है ना मुझे दो चार कब्रें दिखाई और कहा ये सिकंदर है, ये दारा है, ये कैकाउस है, ये सिकंदर आजम की कब्र है, लाखों बांदियां थी उसके पास। आप तो दो चार गर्लफ्रेंड पे फखर कर रहे हो, गर्लफ्रेंड नहीं लाखों बांदियां, गर्लफ्रेंड आपके ताबे नहीं होती, बांदी तो जैसे आप बोलोगे भाई जो काम आप उसके जिम्मे लगाओगे वो भाग नहीं सकती, नौकर है आपकी। तो इतनी बड़ी बड़ी दुनिया इन्होंने रुए जमीन पे हुकूमतें की हैं, आज खबरों के अंदर ये दारा है, ये कैकाउस है, ये सिकंदर आजम है, बड़े बड़े बादशाहों की खबरें आपको नजर आएंगी पड़े हुए अंदर। अब नए जमाने में शेयर को हम यूं चेंज कर देंगे, ये 10 मिलियन वाला है सब्सक्राइबर थे, ये 20 मिलियन वाला, ये 50 मिलियन वाला, एक एक क्लिप। बाद ऐसे मशहूर हो जाते हैं, खुजा भी रहे होंगे ना, बस ये अपनी खुजाने की वीडियो डाल दें यूट्यूब पे, लाखों रुपए कमा लेते हैं बैठे बैठे वो, बाद ऐसे मशहूर हो गए, कुछ भी नहीं करें ना, बस वो कहे कि नाड़ा बांधते हुए दिखा दें, मैं नाड़ा बांध रहा हूं, मैं नाड़ा ऐसे टाइट करता हूं, जार बंद ऐसे टाइट करता, इतने मशहूर हो गए हैं वो, बस लोग देखना चाहते हैं, लोग पता नहीं क्या हो गया अब। अल्लाह ही जाने। वकार जकाने का एक बड़ी अच्छी वीडियो वायरल की है यूट्यूबर्स के बारे में, कि अब मैं वो यूट्यूबर्स की वो वीडियो पे जो उसने कमेंट्स किया वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस पर वो उसका नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। उसने कहा यार ये अजीब व्लॉगर अजीब टाइप के आ रहे हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मिलियन एक एक दिन में एक एक मिलियन उनके व्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये इन व्लॉगर्स का कसूर नहीं है, कौम का कसूर है। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा ये कौम किधर को जा रही है भाई, वॉशरूम में बैठा हुआ बंदा दिखा रहा है, देखे आधा ऊपर वाला दिखा रहा है। मैं कहता हूं अगर वो नीचे वाला पोर्शन दिखा देना यूट्यूब चैनल बंद कर देगा, बोलेगा भाई इतने सब्सक्राइबर इतना क्राउड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, डीमोनेटाइज कर देगा यार, कहेगा भाई ये हमारे बस में अब। तो लोगों की नेचर देखो यार, कुछ भी जो मशहूर हो जाते हैं, एक दफा मशहूर हो गए ना बस अब कुछ भी करेंगे, गाली दे रहे हैं वो वीडियो आ गई, खुजा रहे हैं लोग, देख रहे हैं कैसे खुजाते हैं ये, तो लोग अजीब है। बहरहाल जो हो रहा है मैं तो मार्केट में वही बताऊंगा ना आपको। तो अब जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं जिनके टिकटॉक पे चैनल यूट्यूब पे चैनल, उनके यहां कामयाबी क्या है, 4 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 50 मिलियन हो गए, वो कहते तू एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाता है, चार आदमी तुझे मिलते नहीं है, और मैं खुजाता भी हूं ना सर को तो इतने व्यूज आ जाते हैं, तो कल ये शेयर चेंज होगा, ये सिकंदर है, ये दारा है कब्रों में ना, तो कहेंगे ये 10 मिलियन वाला है, ये 20 मिलियन वाला, ये नाड़ा बांधते हुए एक दफा वीडियो डाली थी इसने और 20 मिलियन ऐसे हो गए थे, तो ये सब आएगा मार्केट में। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से, मेरा उस प्रोग्राम में दिल चाह रहा था एक दफा बोलूं कि आप तमाम हजरात से गुजारिश है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अल्लाह करे और पैसा आए और ये लोग अपने तजुर्बों को शेयर करें, लेकिन काइंडली थोड़ा सा कब्रिस्तान भी, हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब दी है, साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। सही बुखारी की हदीस है, कुन तो नहाई तो कुम अन ज़ियारत अल-क़ुबूरी फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था क्योंकि बिदअतें हो रही थी, शिर्क फैल रहा था, लेकिन अब तौहीद कायम हो गई है, शिर्क का खतरा खत्म हो गया। फरमाया फ़ज़ूरुहा कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि इससे आखिरत याद रहती है, इंसान को अपनी औकात में रहता है, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह मियां भी फरमा रहे हैं तुम उसको बहुत दूर समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं बहुत करीब है, और ये जितनी रंगीनियां इस कायनात की नजर आ रही है ना, ये सब टूट फूट के मिट्टी होने वाली है, बराबर होने वाली। तो यौम तकूनु समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल अहन, इतने बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह कहते हैं रुई की गालों की तरह उड़ेंगे। आप सब्सक्राइबर को लेके बैठे हुए हो, ये बड़े बड़े पहाड़ जो हिल नहीं सकते ना, ये रुई की गालों की तरह उड़ रहे होंगे। व तकूनुल जिबालु कल अहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा, जिगरी दोस्त भी किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहां से मैं आगे से शुरू करूंगा ताकि ये सूरत हमारी खत्म भी हो। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले ना तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। दुनिया कमाओ जरूर भाई, इतना फ्री ना कराओ जितना हम दुनिया को फ्री करा रहे हैं, इतना कराओ जितना यहां पर रहना है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतों के बाद इंशाल्लाह नमाज के बाद ना थोड़ी देर सवाल जवाब का सिलसिला होगा, जो बैठना चाहे बैठ सकते हैं। मेरी उम्र 30 साल है, एक साल पहले मैंने उमरा भी किया, मैं अपनी पूरी जिंदगी में नमाज कुरान के करीब नहीं हुआ, लेकिन गुज़श्ता 5 माह से मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मुझे लाजमी अपनी पिछली फर्ज नमाजें अदा करनी होंगी? अरसलान साहब जी, अदा करनी होंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि पिछली के चक्कर में अब अगली भी छोड़ना शुरू कर दें, ज्यादा टेंशन ले लें। फिलहाल आप अपने आप को इसका आदि बना दें, लेकिन 6 महीने से तो आदत पड़ गई है आपकी, 5 माह से माशाल्लाह नमाज नहीं छूटी, तो ज्यादा टेंशन ना लें इसकी। लेकिन ये कि शरीर मसला तो चेंज नहीं हो सकता, तो उसमें फजर के साथ 2 रकत फर्ज फजर के पढ़ लिए, जोहर के साथ 4 पढ़ लिए, असर के साथ 4 और पढ़ लिए, मगरिब के साथ पिछली मगरिब के, ईशा के साथ, और हमारे नजदीक वितर भी चूंकि वाजिब हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में सही हदीस मौजूद हैं, तो वितर की भी कजा करनी चाहिए। तो एक दिन में कम से कम 1 दिन की नमाजें पढ़ लें आप, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएंगी। मुफ्ती साहब, कराची का इज्तिमा 25 जनवरी को है और ये बात पक्की है, जुमेरात मदनी मस्जिद में भी ऐलान हो चुका है, आप इज्तिमा में जरूर आए इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब। मेरे भाई चप्पल मदरसे में 3 महीने, क्या लिखा है यार, जेल मदरसा में, ये किधर है जेल मदरसा, जेल मदरसा में 3 महीने, जेल को चप्पल लिखा हुआ है, महीने रहकर आया, आपसे दुआ की दरख्वास्त है, दिल से दुआ जी। मौजूदा हालात में पता नहीं किस चीज की दुआ मंगवा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो भी है, मौजूदा हालात में अगर कोई शख्स हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद कर पूरा करता हो मगर इशात दीन और बकाए दीन की किसी भी सूरत का हिस्सा नहीं बनता तो क्या वो गुनहगार होगा? जी गुनहगार होगा, क्योंकि नहीं अलिल मुनकर फर्ज है, तो हर शख्स पर अपनी इस्तेआत के बकदर नहीं अलिल मुनकर फर्ज है। मुफ्ती साहब, पैसे इकट्ठे करने की कोई तरतीब बताएं, मैं काफी सालों से कोशिश कर रहा हूं मगर पैसा नहीं आ रहा, मालदार नहीं हो रहा। आप पहले सेविंग करते हैं, 1 साल का माल बैकअप करना कैसा है? पैसा कमाने के तरीके उन लोगों से पूछो जो पैसा कमा रहे हैं, समझते हो? हम तो नहीं कमा रहे, सीधी सी बात है, जो थोड़ा बहुत तजर्बों के बाद एक, यानी कमाने का मतलब कोशिश नहीं कर रहे कमाने की, हमें तो बगैर कोशिश के ही मिल रहा है, क्योंकि अब तजर्बे पहले मैं कर चुका हूं इन्वेस्टमेंट के, डुबो चुका हूं, फिर मुझे ताल्लुकात की बेस पे ऐसे ईमानदार ताजिर मिल गए कि उनके साथ जब इन्वेस्टमेंट किया तो वो ईमानदारी की बेस पे उन्होंने मुझे नफा देना शुरू किया। तो ये हर एक को ये फैसिलिटी मिलती नहीं है, समझते हो कि नहीं समझते? तो ईमानदार लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है। अब इंसान के ताल्लुकात बहुत बढ़ते हैं तो फिर ईमानदार लोग उसको लाखों में 2-4 मिल जाते हैं, अब आपको तो लाखों मिलेंगे नहीं तो 2-4 कहां से मिलेंगे उसमें? तो ये जो है ना पैसा कमाने का, उन लोगों से पूछो जो पैसा कमाने के तरीके जानते हैं। मेरी तो जिंदगी पैसे को लात मारने में गुजरी है, नहीं कमाने में गुजरी है। लोग ये सुन के हैरान होते हैं, मौली साहब बातें कैसी कर रहे हैं, और ये कोई खुशी की बात नहीं है कि लात मारने में गुजरी, बेवकूफों की बेवकूफी की है मैंने, लेकिन की है। ये कारोबार मैंने किया तो जानकर उसको ठप करने की कोशिश की, यानी मेरे पास कस्टमर जब आता था ना, 2007-08 की बात कर रहा हूं, मेरा शहद का बिजनेस था, घर में शहद का स्टॉक पड़ा हुआ होता था, यहां बंदा आके कहता था जी के जी 1 किलो आप बेरी का शहद, ये कैश अमाउंट दे रहा हूं आप ले आए जाके, मैं कहता ऊपर कौन जाए यार सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, तो मैं कहता था ऐसा करें आप कल आ जाएं, काइंडली आप कब आ जाएं? वजह उसकी ये थी कि मुझे ये था कि नाश्ता मैंने कर लिया, दोपहर खाना मैंने खा लिया, रात का खाना पड़ा हुआ है, मदरसे से इतनी तनख्वाह मिल रही है कि मेरा राशन पानी 2 घरों का हो जाता है, महीने के बाद कुछ नहीं बचता तो तनख्वाह आ जाती है, तो और अगर जामिया से तनख्वाह नहीं मिले, बाज दफा वहां भी हालात ऐसे चलते रहते हैं 2-2 महीने, तो दुकान वाले से इतने ताल्लुकात हैं वो क्रेडिट पे दे देता है, जब 2 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी तो 2 महीने के इकट्ठे पैसे निपटा देंगे उसको, तो ऐसे हमारा हिसाब किताब चल रहा था। तो मुझे ये था कि यार मुझे मेरी ख्वाहिश क्या है, घर जाती घर प्रॉपर्टी तो मेरी ख्वाहिश नहीं है, एक घर मस्जिद ने दिया हुआ है, एक जामिया तो रशीद मुझे उसका रेंट देता है, मैं जामिया में टीचर हूं, तो घर का रेंट, वो 2 बीवियां थी मेरी उस वक्त, तो एक का रेंट जामिया दे रहा है गैस बिजली का बिल, और एक घर मुझे मस्जिद में इमामत है, तनख्वाह थोड़ी है लेकिन मुझे ये सहूलत है, उन्होंने घर दिया हुआ है, तो मुझे क्या जरूरत है पैसा, मेरी जो अपनी खोपड़ी थी वो ये थी। तो घर में आटा दाल गोश्त अंडा जो जरूरत होती है, हर रोजाना गोश्त नहीं बनता था, हफ्ते में 1-2 दफा गोश्त बन जाता है, बहुत हफ्ते में, कीटो मीटो टोफी ड्रामा छोड़ दो, कीटो डाइट ये गरीबों के काम नहीं है, गरीब आदमी सब कुछ खा के भी ठीक रहता है, और अमीर आदमी रोजाना इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है क्या खाना है, फिर भी मर जाता है बहुत जल्दी। तो जाहिर है हम अपनी कीटो भी खाएंगे तो अपनी हैसियत के हिसाब से खाएंगे ना। तो हफ्ते में एक दिन हमारे गोश्त बनता था और एक दिन कढ़ी बनती थी, ओहो दाल चावल। एक दिन वो हमारा सेटअप चल रहा था, सुबह मुझे पराठे, मैं नहीं छोड़ सकता तो अंडे पराठे मुझे हो जाते थे। तो मैं सोचता था यार मेरा तो गुजारा हो रहा है, बच्चों की स्कूल की हमने टेंशन ली नहीं, हमने कहा पैसे होंगे तो स्कूल पढ़ा देंगे, नहीं तो भाई होम स्कूलिंग, घर में रहो बस पढ़ो, जितना अम्मा को आता है वो पढ़ा देगी, जितना हमें आता है हम पढ़ा देंगे। तो अब इसके बाद मुझे जो मैं दिल की मेरे जो दोस्त अहबाब है ना उनसे आप ये पूछ सकते हैं, आप समझे, वो सब शो मार रहे हैं, शो नहीं मार रहा, मैं अपनी बुराई कर रहा हूं, ये बुराई से कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करें, ये हमारा अपना मिजाज हमेशा से ऐसे ही रहा है। तो अब ये कि यार क्योंकि अब पड़ी नहीं रही सर पे ना, कोई जरूरत ही नहीं आ रही, जब पड़ती है तो फिर आदमी कमाने के सोचता है, पड़ी नहीं रही सर के ऊपर। मेरी जरूरत थी पराठा। मुझे याद है जब मैंने दूसरी शादी का इरादा किया, अच्छा पराठा भी घर का नहीं, मुझे होटल ही का पराठा चाहिए, घर का नहीं, घर में वो मजा नहीं आता पराठे में, जितना भी अच्छा बना वो। कभी मेरे साथ बैठ के पराठा खाओ तो तुम्हें पता है, एक दिन लाहौर से एक बंदे आए, उन्होंने कहा ये पराठे पराठे बयान में बहुत करते हो, मैं उसको ले गया होटल में, मैंने नाश्ता कराया, कह रहा यार वाकई ऐसा पराठा आज तक मैंने नहीं खाया। तो वो बड़े पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, वो सफेद आटे के पराठे होते हैं, मजा बहुत है यार। तो अब क्या था कि मैंने कहा मेरी बुनियादी जरूरत, बुनियादी भी नहीं है, अय्याशी है पराठा, बुनियादी जरूरत तो नाश्ता है ही नहीं, दो टाइम की रोटी है, नाश्ता तो आपकी ग्रेवी है। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास तो घर बनाने के पैसे नहीं है, अल्लाह ने दो घर मुझे फ्री फोकट के दिए हुए, एक का किराया वो इदारा दे रहा है जहां मैं टीचर हूं, और एक मुझे मस्जिद में इमामत की वजह से इमाम होने की हैसियत से मिला हुआ है। अबे मैं तो करोड़ अरबपति आदमी हूं, लोगों के पास एक एक घर नहीं है, मेरे पास दो दो घर, अल्लाह की कसम दिल में ये कैफियत, ये ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा। और लोग रोते हुए आ रहे होते थे मैं जाती घर नहीं बना सका और मेरे पास ये नहीं है, मैं कहता इसको देखो पागल आदमी। मुझे उस पर तरस इस पे नहीं आता था जाती घर नहीं है, मुझे इस पे आता था ये बीवी बेचारे की ये की है, मैं अय्याशी कर रहा हूं, मेरी बीवियां कितनी हैं, दो हैं। तो रेंट के घर थे हमारे, रिश्ते भी हम भेजते थे तो कि भाई तीसरी शादी के लिए जब पैगाम भेजा कहां रखोगे भाई, वो दूसरी को आमादा कर लिया कि तीसरी को अपने साथ रख ले। उन्होंने कहा भाई आजकल कोई नहीं रहता इस बेस पे, मेरी बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई, फिर एक दफा हो भी गई थी, एक दफा हुई थी तो तभी हुई ना, फिर तीन वो उसी अय्याम में हुई है, उन्हीं गुर्बत के अय्याम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे कहीं इतना सी भी फीलिंग नहीं हुई है कि मैं गरीब हूं, अल्लाह की कसम मेरी ये कैफियत थी, मेरे से बड़ा सेठ शायद दुनिया में कोई भी नहीं। वजह उसकी ये थी, मैं सोचता था कि एक होती है जरूरत, अल्लाह मेरी सिर्फ जरूरत पूरी नहीं कर रहा बल्कि मुझे जरूरत से कई गुना ज्यादा दे रहा है, ये जो पराठे मैं सुबह अंडे के साथ फोड़ रहा हूं ये मेरी जरूरत, बोलो। तो मैं तो तीन टाइम का खाना खा रहा हूं यार, गोश्त हफ्ते में एक दिन खा रहे हैं तो क्या हुआ, दाल चावल और भिंडी का जो मजा है, खुदा की कसम भूख लग रही हो भिंडी ऐसे फोड़ता है आदमी, मैं तो मजे ले लेके खाना खाता हूं, भूख लग रही हो अभी मुझे लग रही है भूख, बाकी मुझे सख्त भूख लग, मैंने दोपहर खाना नहीं खाया इसलिए भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो अब मैंने सब घरों में फोन घुमाया है क्या पका हुआ है, ये सहूलत है, तुम गरीब हो। अब मेरा तुम्हें गालियां देने का दिल चाह रहा है, हमने फोकस किया शादियों को जो नेचुरल है, तुम फोकस करते हो बहरिया टाउन को, गाड़ियों को, ये नेचुरल थोड़ी है यार, जो नेचुरल लज्जतें हैं वो तो बीवी और बच्चों में है, समझते हो कि नहीं समझते, बीवियां होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वहां से मोहब्बतें मिलती हैं, गाड़ी भी तो थोड़े दिन में धी भर जाता है, फिर आदमी कहते हैं इससे ऊंची की गाड़ी, फिर उसके बाद फिर बड़े बड़े लोग गाड़ियां बेच देते हैं, उबर में जा रहे होते हैं वो, ये खिलौने हैं थोड़े दिन के दिल बहलाने के, इनसे दिल भर जाता है ना, बीवियों से दिल भरता है ना बच्चों से दिल भरता है, ये तो नेचुरल है ना, पराठे से दिल भरता है, कभी रोटी से दिल भरा किसी का, एक दिन खाई दो दिन खाई अब मैं नहीं रोटी खा रहा, अब फिर भूख लगेगी फिर रोटी खाने का दिल, ये नेचुरल है। तो हम शुरू से कोशिश करते हैं नेचर पे रहें भाई, नेचर पे रहें, तो ये तो बचकाना बातें हैं, गाड़ी बंगला बहरिया टाउन, पैसा बहुत दे दिया तो बना लो, नहीं है तो ये कोई थोड़ी फजूल चीजें हैं यार, दीवारों ईंटों से। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा अरबों रुपए लगा के उन्होंने शीश महल बनाया, इतना बेहतरीन घर, खुदा की कसम रहना नसीब नहीं हुआ, जिस दिन घर तैयार हुआ हार्ट अटैक हुआ मर गए, काश वो अरबों रुपए लगा के अपनी सेहत का ख्याल कर लेते या कुछ और कर लेते। तो वो बच्चे भी फिर वो फ्री फोकट के पैसा ना बेच बाच के खा रहे होते हैं, अय्याशियों में उड़ा रहे होते हैं। तो इसलिए अभी जो है वो मैंने घरों में फोन घुमाया तो शलजम और जो है गोश्त का शोरबा कहीं नहीं पका हुआ था। तो गार्डों से मैंने पूछा तुम लोगों ने क्या पकाया, उन्होंने कहा शलजम गोश्त। मैंने कहा हम आपके साथ खाना खाएंगे आज, शलजम गोश्त शोरबे वाला ताजा, सब मजा आता है यार। बड़े गोश्त में ना शलजम डाल दो, सब्जी डाल के पकाओ, बड़ा मजा। तो इतनी खुदा की कसम ये लजीज नेमतें अल्लाह, भूख लग रही हो, अचार हो, दाल चावल हो, कड़ी पत्ते वाली, आपको लग नहीं रही ना इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। अभी समोसे खा के बैठे होगे आप चाय के साथ। जिसको भूख लग रही हो ना उसको ही मेरी बातों को वो इंजॉय करेगा। मुझे चूंकि लग रही है बातों में मजा आता है। ये नेचुरल लज्जतें हैं, जिनको ये मिल रही है बस वो अय्याशियों में है भाई। क्या करना है ऐसी दौलत का, ना कुछ खा सकता है ना। अक्सर मालदार हमने देखे हैं एक आध बच्चा उनका, वही बच्चा खराब निकला, वही टेंशन दे रहा है, जिंदगी अजाब बन गई उनकी। शुरू में पैसे से बर्गर इतने खा लिए कि अब कुछ खाने के काबिल नहीं बचे, इतना वजन बढ़ गया उनका, खा ही नहीं सकते, पराठे का नाम सुन के बेहोश हो जाते हैं वो। तो सबसे बड़ी नेमत सेहत है, बीवी बच्चे हैं और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, बेशक वो किराए ही की क्यों ना हो। तो मैं कहता यार लोगों के पास एक जगह, मेरे पास कितनी है, हालांकि मेरा इनमें से एक भी नहीं। मस्जिद वाले जब इमामत से निकाले तो घर भी गया, क्या ख्याल है। तो और एक का किराया जामित रशीद दे रहा था, वो भी किराया दे रहा था, तो उन्होंने कहा ले लो, वो भी एक मखसूस किराया था। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए इतना बहुत है, दो कमरों का घर लिया हुआ था मैंने। एक दफा एक साहब आया हमारे घर, देखे दो कमरों का घर है, उन्होंने कहा यार मुझे साहब मेंबर पे बातें इतनी बड़ी बड़ी, ये घर है टोटल। मैंने कहा जितनी बड़ी बातें उससे बड़ा अल्लाह ने घर दिया है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह दो घर दो कमरे, मेरी जरूरत इससे पूरी हो रही है। उस वक्त मेरे 16 बच्चे थोड़ी थे, दो बच्चे थे, तो दो कमरे बहुत हैं उसके, बहुत है दो कमरे, रह लेते हैं, एक वॉशरूम है, किचन है थोड़े बहुत। बस एक चीज की मुझे टेंशन थी, धूप धूप नहीं है उसमें, हवा भी थी धूप नहीं है, तो वो एक टेंशन थी। तो मैं कहता था यार अल्लाह ने सारी अय्याशियां दी हुई हैं, तो एक थोड़ी सी अगर टेंशन दे दी तो क्या है, धूप का इंतजाम नहीं है, क्योंकि सनलाइट मेरे लिए, मैं नहीं बगैर धूप के बगैर गुजारा होता। तो फिर वो ये बड़ी एक टेंशन होती है इंसान को। खैर तो मैं जब दूसरी की सोच रहा था ना, तो मैं नाश्ते नहीं मुझसे छूट रहे थे होटल के जो खास किस्म का पराठा। तो मुझे याद है मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, यार मैं अब दूसरी शादी कर रहा हूं, मेरा खर्चा बढ़ेगा, मुझे ये होटल का पराठा छोड़ना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा रहे हो गुर्बत का। लेकिन मैं गरीब ना उस वक्त समझता था ना अब, और हकीकत ही हम कहां खसे गरीब है भाई। तो मैंने कहा यार ये मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे खर्चे डबल हो जाएंगे, तो मुझे अब यहां से क्या करना है। ये अय्याशी जो है ना, अय्याशी पठान होटल के जाके पराठे फोड़ो, ये अय्याशी मुझे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह का की कुदरत ऐसी हुई कि वो भी नहीं छोड़नी पड़ी। आप जैसे जैसे शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है, तो कम होती नहीं है किसी कीमत। अब मेरी सोर्स ऑफ इनकम फिर कहां से, क्या आसमान से पैसे बरसना शुरू हुए। मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं कि मैं तो बता रहा हूं ना, कारोबार शुरू किया तो ये बिजनेस हो रहा था मेरा, मैं बैठा हुआ हूं जी शहद चाहिए, अबे ऊपर कौन जाएगा शहद लेने, क्यों मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मुझे लग रहा है ये बिजनेस क्या है, गरीबी है। अगले दिन आ रहे अंकल भाई अब तो ले आओ, फिर अगले दिन गया मैं शहद लाया, चलो यार ले लो भाई, इस तरह से हमारा शहद बिक रहा है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी इतना होना शुरू हो गया। लेकिन इतना नहीं हुआ कि किसी के बिजनेस में जो बाकायदा। तो मुझे फिर अब तो चूंकि मेरे माली हालात और अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुझे लगा कि यार अच्छा, फिर मैंने निकाह जब रजिस्ट्रेशन, मैं निकाह फ्री में पढ़ाता था, पैसे नहीं लेता था, मुझे अजीब सा लगता था निकाह पढ़ा रहे आदमी पैसे ले रहे हैं उसके। लेकिन क्या हुआ, 4-6 दफा मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये निकाह का नामा, निकाहनामा बैठ के फिल करते रहो, नादरा से वो लोग भी पैसे मांगते हैं, नादरा से रजिस्ट्रेशन करवाओ उसकी, अच्छा खासा टेंशन वाला काम है, या तो मैं पाबंदी लगा दूं मैं किसी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, या मुझे कोई बंदा रखना पड़ेगा। फिर मैंने बंदा रखा क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे निकाह पढ़वाने के लिए। अच्छा उस काम के लिए मुझे निकाह रजिस्ट्रार बनना था, लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आप निकाह रजिस्ट्रार बन जाओ, इसमें बड़े पैसे आएंगे। मैंने कहा एक साल तक मुझे ये तौफीक ही नहीं मिल रही कि मैं जाऊं ऑफिस कि मुझे सर्टिफिकेट देखो दे दो काजी की निकाह रजिस्ट्रार का, हिला ही नहीं जा रहा क्योंकि जरूरत नहीं है ना, पराठे चल रहे थे उसी हिसाब से, तो मैं क्यों जाऊं। फिर मैंने क्या किया, एक काजी ने मुझे, एक निकाह रजिस्ट्रार ने कहा यार आप मेरा फॉर्म लेके पढ़ा आप दिया करो, फीस लेके मुझे दे दिया करो आप मैं रजिस्टर कर। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया, 6 महीने मैंने ऐसे किया। एक निकाह रजिस्ट्रार आए, उन्होंने कहा मैं, मेरे पास पूरा सेटअप है, पढ़ा आप दिया करो, डॉक्यूमेंटेशन मैं कर दूंगा, पैसे किसको दे दिया करो। तो मैंने पैसे लेना शुरू कर दिया, उनको देना शुरू, उसकी तो मेहनत हो रही थी ना बेचारे की, निकाह भरना भी है उसने। एक दिन क्या हुआ, जो यूनियन काउंसिल में होते हैं ना, जो निकाह रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, वो खुद मेरे पास चल के आ गया। उसने कहा मुफ्ती साहब आपके नाम से आपके साइन से इतने निकाह हो रहे हैं, तो आप खुद निकाह रजिस्ट्रार क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा यार मुझे ये वहां चल के जाते हुए बहुत टेंशन हो रही है कि क्योंकि मुझे जिस चीज की जरूरत ना हो ना मुझसे वो काम होता नहीं है, तो अब मेरी जरूरतें पूरी हो रही। उन्होंने कहा आप इधर उनको इतने पैसे दे रहे हो, खुद रख लो, वो कुछ अपना रख लो, कुछ अपने असिस्टेंट को दे दो कुछ। तो मैंने फिर ये किया कि वो, मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो खुद घर पे आके सारा काम किया, सर्टिफिकेट पकड़ा के चला गया निकाह रजिस्ट्रार का। मैंने कहा स्टैंप तेरा बाप लगाएगा इस पे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। उसने ठप्पे लगे हुए ना पहले से, आप पर एतमाद है आप भी इसे यूज नहीं करोगे। फिर मैंने एक असिस्टेंट रखा, मैंने कहा निकाह की सारी डॉक्यूमेंटेशन तेरे जिम्मे है, तो मैं फीस ले रहा हूं उनको देने के लिए, फिर जाहिर है मुझे भी बचती है। तुम अब इतना भी इस्तेगना ठीक नहीं है ना, इतना भी शो मारना ठीक नहीं है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर जो रिस्क आ रहा है तो आने दो। फिर हमने उसकी फीस रख दी, हमने कहा ठीक है भाई इतना तेरा, इतना टाइम तो लग रहा है ना। तो यहां जाके फिर ये वो इतने निकाह आने शुरू हो गए कि अंडे पराठों से हम थोड़ा आगे, और हमने कहा फ्री फोकड़ का आ रहा है भाई। अच्छा खैर, फिर भी इतनी फीस नहीं है जितनी लोग ले रहे हैं। मैं अपने नाम की फीस लेना चाहूं ना, जो अल्लाह ने टूटी फूटी हम जैसे नालायकों को शोहरत दे दी, तो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद काजी की फीस 1.5 लाख 2 लाख होती है। हमारी फीस इस साल 10,000 हुई है, समझ रहे हो। और उसमें भी लोगों को कहा हुआ है कि कोई भी एक दफा कह दे कि मेरे पास नहीं है तो दोबारा उससे पूछने की जरूरत नहीं है। ये नहीं उसके कि तू आईफोन लेके कैसे घूम रहा है जब तू कम वक्त 10,000 नहीं दे सकता, ये तेरे पास ये मोबाइल कहां से, ये नहीं। उसको मैंने असिस्टेंट को बताया भाई जो एक दफा कह देना कि नहीं दे सकता, दोबारा पूछने की जरूरत बोलो नहीं है, फ्री में पढ़ाएंगे। तो फ्री में बहुत सारे निकाह पढ़ाता हूं, और ताल्लुक वालों से तो एक रुपया भी नहीं होता, बल्कि असिस्टेंट को अपनी जेब से दे रहा होता हूं कि यार तेरी मेहनत तो लग रही, नादरा में तो खर्चा हो रहा है ना, मुझसे ले लेना पैसे। वो समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो हमने तो पूरी जिंदगी कोशिश की है नालायकी में पैसे को लात मारने की। तो ये शादियां बच्चों ही की बरकत है जो अल्लाह खिलाए, अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा वो अब तक इसलिए ताकि 15 साल पहले जो मेरे साथ दोस्त थे ना, जो कहते थे तुम शादियां कर रहे हो पैसा है नहीं तुम्हारे पास भूख से मरोगे, तो अल्लाह ने मुझे अब तक जिंदा इसलिए रखा हुआ ये बताने के लिए कि इनको बता देना कि इस बच्चों की स्पीड भी कम नहीं हुई है, शादियों की स्पीड में भी कोई कमी नहीं आई है, और अल्लाह कैसे खिला रहा है कैसे पिला रहा है। एक अहले हदीस दोस्त है मेरे, 2010 या 11 में मुझसे मिलने के लिए आए थे, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, लाल ना कलर, वो मेहंदी लगाई हुई उन्होंने, मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी उन्होंने। अभी मेरा कल उनसे फोन पे, परसों उनसे फोन पे बात हुई, इसलिए मैं ये वाकया सुना रहा हूं। वो आए कह रहे आपने क्या किताब लिखी है मुफ्ती साहब। अच्छा उन्होंने मेरे हालात देखे, मेरी फटपटी, उन्होंने मुझे अपने घर में दावत की। उन्होंने कहा यार मैंने ऐसी किताब आज तक नहीं पढ़ी, बड़े मुतासिर थे। ये वही है जिनको तबलीग में नहीं मैंने बताया था कि वो सारे फिरकों में धक्के खा के आखिर में गए तबलीग में, वो ये वही है, बरोही है, बरोही। तो बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है। इन्होंने मेरी घर में दावत की, मैं अपनी फटपटी पे गया। अच्छा उस वक्त भी हमारा हिस्सा, हम फटपटी को समझ रहे थे लैंड क्रूजर है हमारी, गुर्बत गुर्बत का तो उस वक्त भी एहसास नहीं था, क्योंकि भाई लोगों के पास ये भी नहीं होती यार, तो हम तो फटपटी पे जा रहे हैं, टर्न करके पहुंच गए। मुझे ये खुशी होती थी कि इसके पैसे मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पेट्रोल डाल सकता हूं अपने खर्चे पे। तो उनका परसों फोन आया, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे आपका वो जमाना याद है, और कहते हैं मैं आपका हर जगह दिफा करता हूं, हर जगह दिफा करता हूं कि इस आदमी ने उस वक्त ये बात कही थी कि पैसा मत देखो शादियां करो नस्ल मत रोको। कह रहे अब लोग ना आपकी रीवों पे एतराज करते हैं, ये मुफ्ती रीवों में घूम रहा है, ये मुफ्ती अमेरिका जा रहा है, ये मुफ्ती जापान जा रहा है, ये मुफ्ती स्विट्जरलैंड जा रहा है, ये मुफ्ती ये भाई जब जाहिर है नोट आएंगे तो शादियां तो होंगी। कह रहे मैं हर एक के साथ सामने दिफा करता हूं कि मैं इस मुफ्ती को जितना जानता हूं आप लोग नहीं जानते। इस मुफ्ती के पास बच्चे पहले आए हैं, बीवियां पहले आई हैं, रिवो और अभी तक ये रिवो मेरी नहीं है, किराए पे है। अच्छा ये मैं वैसी रास की बात बता दूं, लेकिन हम इसको क्या समझते हैं, ये बैंक से लीजिए तो रेंट रेंट देना पड़ता है। तो लेकिन भाई हमें इससे क्या मेरी है या रेंट की है? अबे है तो स्टेयरिंग किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल, मेरी है बस। किराए का घर है, अगर चाबी उसकी मेरे पास है तो किसका घर है वो? मालिक मकान मेरी परमिशन के बगैर नहीं घुस सकता घर में। आए ना अगर बोलो तो क्यों आ रहा है भाई तू, मेरा घर है। तो इतना काफी है मेरा होने के लिए, इससे ज्यादा की हवस मत करो। फिर बहुत पैसा अल्लाह ने दे दिया तो ठीक है। अब मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था, मेरे पास तो जमीन ही नहीं थी सब्जियां उगाने के लिए। तो अब एक है तो गवर्नमेंट की जमीन ही है लेकिन किसी काम की नहीं है, तो हमने यहां पौधे लगाना शुरू कर दिए। जब तक कोई छेड़ नहीं रहा तो हम अपनी समझ रहे हैं। अभी मैंने उसका व्लॉग भी बनाया है, लोग समझ रहे मुस्ताफ के पास बड़ा एरिया जबरदस्त, हालांकि वो गवर्नमेंट की जमीन है। लेकिन मुझे इससे क्या करना है? जब वो मेरे काम में सब्जी उगा के मुझे दे रही है, मेरे टमाटर का शौक पूरा कर रही है, मेरी भिंडी का शौक पूरा कर रही है, तो अबे अपनी भी तो यही करती है उसमें। वो गवर्नमेंट तो खुशी होगी, अच्छा किसी काम में आ रही है। ये जो नर्सरी वाले होते हैं ये तो फुटपाथों पर लगा रहे होते हैं ना, ये जो फुटपाथ पे नहीं, वो जो बीच में रोड के बीच में जगह होते हैं, गवर्नमेंट तो चाहती है अच्छा है ग्रीनरी होगी, तो बस वो अपनी समझो उसको यार तुम। तो मुझे क्या करना है कि कागज में मेरे नाम हो? भाई जो चीज मेरे इस्तेमाल में है वो किसकी है? आपने पराठा अपने खर्चों से खरीद के मुझे उसमें शरीक कर लिया तो ये पराठा किसका है? मेरा है। मजा वही आएगा उसमें। अब मैं कि ये मैंने क्योंकि अपने पैसों से नहीं खरीदा। अबे तू बेवकूफ आदमी है, तू किसी और के पैसों से अगर तू तुझे पराठा खिला रहा है, वो तेरा दोस्त है, कोई भिखारी बन के नहीं खिला रहा, कोई ऐसा नहीं वो बाद में तुझे ताने दे रहा हो, तो तुम्हें तो निवाला पेट में जा रहा है ना, तुम्हारी तो बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब तुम्हारे खर्चे पे हो किसी और के खर्चे पे हो, तुम्हें आम खाने से मतलब है, तुम्हें पेड़ गिनने से मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरे रब के मुझ पर एहसान आते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे माँ भी मिली मोहब्बत वाली, बाप भी मिला मोहब्बत वाला, बहन भाई की नेमत मिली, अब्बा अम्मा खिलाते रहे, उस वक्त मेरे खर्चे पे नहीं अब्बा के खर्चे पे हम खाते रहे, हमें खाने से मतलब था। अल्लाह ने हमें घर की छत भी दी, अब्बा के घर था वो, मेरा घर नहीं था। तो मुझे इससे क्या गरज कि मुझे तो घर मिल गया ना जो मेरी जरूरत है। फिर जब हमारी शादी हुई, दूसरी जब हुई है, तो धक्के मार के घर से निकालने की कोशिश से पहले ही हम निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था निकाल दिया जाएगा लेकिन हम पहले ही निकल गए, तो लेकिन निकाला नहीं है। दूसरी ज्यादा बातें नहीं जा सकती। खैर तो अब कुछ बातें आने में घर वाले भी सुन रहे होते हैं, वो भाई भी बोल रहे क्या आप क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा खैर तो फिर मुझे घर किराए पे मिल गया, तो मेरी तो छत, मुझे वही छत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, पराठे उसी तरह से चलते रहे, खाना पीना चलता रहा, अब तक भी चल रहा है। तो मैंने इसलिए कारोबार को बदतमीजी के साथ कारोबार किया कि जरूरत ही नहीं पड़ रही यार, कोई मुसीबत पड़े ना, भूख लग रही है, मर रहे हैं, तो फिर आदमी इखलास से करता है। तो हमारी महीने के एंड के बाद नहीं, मुझे अगले महीने की पहली तारीख को मेरे साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता होता था। तो अब ऐसे आदमी के पास अगर पैसा आए तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो उस जमाने को बादशाहत वाला जमाना समझ रहा हो। तो मेरे पास तो अगर रिवो आ गई तो मैं तो कह रहा हूं यार, मैं तो फटफटी को समझता था क्या ये जो नहीं होती धक्के वाली फटफटी। फिर हमारे पास जब पैसा आया तो हमने फिर वो GTO 110 भी खरीदी, ऐसा नहीं है कि वो फटफटी घूमते रहे। तो जब ये तो फिर तो इसलिए हम लोगों के मसाइल गुर्बत नहीं है, नाशुक्री है। आपने एक फर्ज किया हुआ है कि मैंने इस लेवल तक जाना है मैंने, अबे क्यों फर्ज करके बैठा हुआ है? तो मेहनत जरूर कर, अल्लाह दे दे ठीक है, नहीं दे तो जो है उसको समझो कि बहुत दिया अल्लाह ने हमें। और इससे इंसान की सेहत अच्छी होती है, खुश रहता है तो और अच्छी हो जाती है, हर चीज को एंजॉय करता है। और जो आदमी बेचारा दौलत की टेंशन लेके बैठा, वो कमबख्त दौलत भी उसके काम की नहीं होती, उसको हर वक्त टेंशन खाई जा रही होती है। तो खुश रहना सीखो भाई, खुश वही रहेगा जो कहेगा मेरे पास मेरी हैसियत से ज्यादा अल्लाह ने मुझे दिया है। जो ये जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो वो खुश रहेगा। और जो ये समझने लगा कि मेरी जरूरत इतनी है, अल्लाह दे कम रहा है मुझे, तो टेंशन में जाओगे। तो प्रॉपर्टी को टेंशन ना बनाओ, जाती गाड़ी को टेंशन, बोलो पैसा कमाना ना छोड़ दो, पहले ही मरे हुए लोग हैं और मर जाएंगे, ऐसा ना हो मेरी मोटिवेशन से आप समझे पैसा, गरीब गरीब लोग हैं, मुल्क का बेड़ा गरक हो रहा है, लोगों के पास पैसा आएगा तो मुल्क को भी फायदा, और पैसा कोशिश करो डॉलर में कमाओ, पाकिस्तानी करेंसी में पैसा कमाने का ज़कात देनी चाहिए ऐसे आदमी को जो यानी करेंसी में पैसा कमा रहा है। तो पैसा कमाओ डॉलर में, हम तो लोगों को तरगीब देते हैं बाहर से पैसा लेकर आओ, तभी मैं लोगों को कहता हूं यूट्यूब चैनल बनाओ, व्लॉगिंग करो, कुछ भी करो। अभी तो मेरा इवेंट तो इस्लामाबाद में यही तो तरगीब देने के लिए था कि ये जो यूट्यूब है ना बेहतरीन, जो यूट्यूब की अर्निंग के जो हराम होने के लोग कहते हैं ना, हराम है उसको तो मैं कई दफा दलाइल दे चुका हूं, لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا, جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے, پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے, لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, یہ کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے. آپ نے اگر خود بٹھایا ہو, کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گنا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں رکھا ہے؟ ابے دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلے ہیں, بال بڑے ہوئے اس کے, وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے, تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے؟ کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں, موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بدنظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے, کیا آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو, لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ, تو یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے, یہ کون غلط کر رہا ہے؟ یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو. تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے, آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سیر وزہ لگاؤ اس کا تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے, اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پوری ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا, اور چار دو تین سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, ہم وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز, لوگ کما رہے تھے ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں, احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے لوگ رکھنے, امپلائز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے, اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. کمبخت یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا, تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ان کو تو کیا, ان کے تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کو تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو وہ لوگ یہ باتیں کرتے, حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, دو نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط, ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز کا, لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا, تو میں نے کہا اس میں میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا, اپنے بارے میں میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں میں اپنی فتوے پر عمل کروں؟ نہ نہ نہ. तो जो एक्सपर्ट मुफ्तियाने किराम है, उन जो मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है, आधा आधा एक एक घंटा मैंने बैठ के उनसे फिर इस पर डिस्कशन की है कि भाई और भी जितने पहलुओं के लिहाज से इस पर गौर किया जा सकता है। तो ये बात कहां से चली थी, तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि पैसा कमाने का तरीका। तो मेरे पास तो एक ही तरीका है, शादियां करो, बच्चे स्पीड से पैदा करो, जब जरूरत बढ़ेगी तो रिस्क के दरवाजे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, बच्चे भी स्पीड से पैदा करो और रिस्क कमाने की कोशिश भी करो। ऑप्शनल हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमने रिस्क को लात मारी फिर भी रिस्क आ गया, लेकिन अल्लाह का कानून ये नहीं है। कानून अल्लाह का ये है कि आपको शादी भी करनी है और कमाने की फिक्र भी। मेरे साथ शायद इसलिए भी हो गया हो कि हम तो दीन की खिदमत के लिए मैंने वक्फ किया अपने आप को कि यार हम सारी जिंदगी दीन की खिदमत करेंगे, तो शायद अल्लाह की कोई रहमत हो गई हो कि चलो यार एक बंदा दीन की खिदमत में लगा हुआ है और इबरत का निशान ना बन जाए कहीं चार शादियों के बाद सारा फलसफा ही दफन हो जाए शायद। और ये भी ढील भी हो सकती है अल्लाह की तरफ से इस्तिदराज भी कि अल्लाह ताला मेरे किसी अमल से नाखुश हो, अल्लाह बचाए ऐसी बात से। लेकिन बहरहाल अल्लाह का ठीक है, अभी खा ले बेटा तुझे पकड़ूंगा मैं, अल्लाह बचा के, ये भी डर लगता है हमें तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जो शरीयत का उसूल कायदा और जाब्ता है कि जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रिज़्क हलाल कमाना और उसकी कोशिश करना भी उसी तरीके से फर्ज है। तभी मैं उन दिनों में भी तारीफ के तौर पर ये बातें नहीं करता था, मैं कहता यार ये मैं नालायक हूं, मुझे करना चाहिए, जब मेरे बच्चों की स्पीड उसी स्पीड से पैदा हो रहे हैं तो मुझे उनके फ्यूचर की फिक्र करनी चाहिए, कुछ कारोबार करना चाहिए, कुछ जो है ना कमाने की फिक्र करनी चाहिए। तो ये फिक्र करना फर्ज है, ऐसे तवक्कुल जायज नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो कि चूंकि पराठे का खर्चा पूरा हो रहा है तो कल जब गुर्बत आई ना तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, चारों बीवियां मिलके तुम्हें चित्रौल लगाएंगी फिर सही बात के दुकान पकौड़ों की और बातें। तो एक भी शादी कर रहा है आज, एक भी शादी गुर्बत में बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है, भाई आपने कोशिश की फिर भी नहीं हो रहा, तो उसमें तो इंसान सब्र करे। एक अपनी हमाकत से होती है, वो खतरनाक है, वो खराब है। आजकल जो ज्यादातर गरीब है ना हम, वो अपनी हमाकतों से हैं। बाकी ये जो भाई ने पूछा है पैसे कमाने का तरीका, तो भाई माहिर लोगों से पूछें आप ये देखें आपके अंदर क्या काबिलियत है। एक अहम बात, अभी जो हम जो इस्लामाबाद में गए ना, एक बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हुए थे, एक यूट्यूबर ने बड़ी प्यारी बात की, इधर मलीर कैंड के थे वो, उन्होंने कहा कि ये जो भी पैसा कमाने की कोशिश करता है ना और वो चाहे कि पहले दिन में आ जाएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आप तसल्ली के साथ, मेहनत के साथ जो आपके अंदर सलाहियत है वो करते रहो। हम में से हर शख्स दो दिन में करोड़पति बनना चाहता है तो उससे डिप्रेशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। जुआरी बन जाते हैं दो दिनों में करोड़पति, जुआ खेलने वाले, लेकिन दो दिनों में फिर वो भिखारी भी बन जाते हैं। तो वो जुए वाला तरीका है, हलाल तरीके से ऐसा बहुत ही कम होता है। मैं सोचता बहुत हूं मगर अमल नहीं करता, जैसे हज वर्जिश करनी है, जॉगिंग करनी है, रात को पूरी प्लानिंग कर लूंगा मगर हज नहीं, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, पहला कदम उठाऊं और अमल करूं। मैंने पूरा जुम्मे का बयान इस पे किया है कि डायरी पे लिखना सीखो, जो जो बातें आपने करनी है एक डायरी पे ले आओ कि ये मैंने करना है, और फिर ऐसे ही ले आओ अटरम पटरम, ये नहीं कि तरतीब से लिखना शुरू करो, वरना लिखा ही नहीं। जो करना है ना अपने फ्यूचर में, जो आपकी जरूरत है वो आप डायरी में डाल दो, यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये अटरम पटरम जो कड़बड़ आता है ना लिख दो उसके ऊपर। फिर ये एक दिन में नहीं हो जाएगी प्लानिंग, जहन में रखना, हो सकता आधा घंटा एक घंटा आपको जो आपके दिमाग में वो डायरी में लिखने में ही लग जाए और कोई प्लानिंग ना हो तो कोई बात नहीं, कल इससे आगे से शुरू कर लेना, समझ रहे हो। फिर आपने क्या करना है, इनमें कौन से काम पहले करने हैं, कौन से, ये तो पूरा टाइम मैनेजमेंट की एक वर्कशॉप होती है, वो टाइम लैंडर वाले करवाते हैं, वो यमीनुद्दीन नाम है ना सुलेमान अहमद साहब के आजकल जो, वो बड़ी जबरदस्त वर्कशॉप करवाते हैं, उसको अटेंड कर लें एक दफा, यमीनुद्दीन इंटरनेट पर सर्च करेंगे आ जाएगी, वो बहुत खानदानी वर्कशॉप करवाते हैं, सुलेमान अहमद साहब करवा रहे हैं आजकल, नहीं करवा रहे मुझे नहीं पता। टाइम लैंडर लिखेंगे ना उस पर, LENDER, तो वो यूट्यूब पे उनके वर्कशॉप करवाते हैं। उसका खुलासा यही है कि आप डायरियों में चीजें उतारें और दिमाग में ना रखें, फिर आप कहें कि यार वर्जिश शुरू करनी है, क्यों नहीं हो रही है, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। इसी तरह अगर जिंदगी गुजरी तो एक दिन मर जाओगे, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाएगा डॉक्टर कहेंगे अब आप भागे ना तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे, इतना वजन बढ़ जाएगा, तो उससे पहले पहले भाग लो। तो फिर आप कहें कि यार ये रुकावट क्या बन रही है, उसको लिखें, रुकावट ये बन रही है सुबह बहुत सुस्ती होती है, सुबह दिल नहीं चाह रहा होता, तो चलो मगरिब के बाद शुरू कर दो, सुबह जो काम कर सकते हो वो कर लो भाई, सुबह नहीं हो रही ना, फायदेमंद तो सुबह ही है, नहीं हो रही तो जब हो रही है उस टाइम पे कर लो यार, मगरिबी असर के बाद मुझे सुस्ती नहीं होती, असर के बाद कर लूंगा। अच्छा, शैतान फिर यहां आके कहता है असर के बाद भी, क्योंकि पोस्ती पना माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम, आपको पता है, आपने डायरी में लिख दिया भाई सुबह हिम्मत नहीं होती, असर के बाद करूंगा मैं, ये आसान है मेरे लिए, असर के बाद भी नहीं होगी मुझे पता है, असर के बाद भी नहीं होगी। फिर आप असर के बाद कहोगे भाई इससे बेहतर एक समोसा खा लो, चाय पी लो, तो आप फिर आप प्लानिंग ये करो कि यार असर के बाद भी नहीं हुई, वजह क्या है? वजह ये कि अबे सोचो आप जाके दौड़ोगे पार्क में, तो यार ऐसा करो दौड़ेंगे नहीं, पार्क में वॉकिंग कर लूंगा मैं 15 मिनट, ये तो हो जाएगा ना, तो ये लिख दो कल वॉकिंग करूंगा खाली, जॉगिंग के तस्वूर से रूह कांप रही है। तो आप फिर क्या होगा पता है, फिर आप अबे 20 मिनट कौन वॉकिंग करेगा यार, इससे बेहतर है वो जो मेरा दोस्त आया हुआ है उसके साथ इधर ही बैठ के, क्योंकि वो कौन सा वॉकिंग के लिए आपके साथ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है यार, 15 मिनट भी नहीं हो रही ना, ऐसा करो पार्क का एक चक्कर लगा के आ जाऊंगा बस। तो जो हो रहा है ना वो कर लो, इसका फायदा ये होगा कि अगले दिन आपके अंदर इससे ज्यादा की सलाहियत पैदा, बोलो मैंने 20ों दफा तजर्बा किया है, मेरा जॉगिंग का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता था बाज दफा, अबे यार सुस्ती हो रही है, जूते पहन के मैंने इरादा किया मैं जाऊंगा पार्क में ना जॉगिंग, जॉगर पहन के गेट को हाथ लगा के आ जाऊंगा बस, आ चुके, ऐसा होता है बाज दफा मूड ही नहीं हो रहा यार, सुस्ती, और कोई वजह नहीं होती, वह वैसी सुस्ती इंसान के साथ ही हवाल होते हैं, हर एक के साथ होते हैं। तो मैंने तजर्बा किया है, शूज पहन लो बस आप, और बोले मैं पार्क के गेट को हाथ लगा, लेकिन अब आदमी वहां जाता है तो कहता है चक्कर लगा लो यार, कर लो भाई, ठीक है ना। जिम कभी कभार जाना होता है, तो हम जाते भी नहीं पाबंदी से, लेकिन जब जिस दिन स्केड्यूल में होता है कि आज जाना है, बहुत ये सब काम ना नौजवानों के शुरू शुरू के बड़े जोश होते हैं, मैंने देखे बड़े लड़के आते हैं जिम जा रहे हैं और स्पीड ब्रेकर बना लिए ना बहुत सारे यहां पे, तो 4-6 दिन के बाद फिर सुस्ती शुरू। असल में वो टाइम होता है कि अब आपने उस काम को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो ज्यादा के चक्कर में थोड़ा मत छोड़ो, थोड़ा सा करोगे तो आपको वही मोटिवेशन मिल जाएगी। कई दफा ऐसे हुआ मैं जिम गया, मैंने कहा बस एक दफा ना वो यूं पुली खींच के आ जाऊंगा मैं, आज हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन जब आदमी जाता है तो आदमी कहता है यार प्रॉपर पूरी एक्सरसाइज करो जो आपका मामूल है। तो सुस्ती का इलाज यह है कि शैतान आपको बेवकूफ बनाता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, आप शैतान को टोपी कराओ, आप बोलो मैं कौन सा पूरा काम कर रहा हूं भाई, मैं तो गेट को हाथ लगा के वापस आ रहा हूं, बचपन में घंटी बजा के भाग जाते थे ना, तो पार्क की गेट को हाथ लगा के वापस आ जाएंगे, तो बस इतना। जैसे नमाज में भी यही है, आपका नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, बहुत टेंशन है, हदीस में ये नुस्खा सिखाया गया है, फजर में उठा नहीं जा रहा आपसे, तो आप ये ना बोलो कि मैं भी नींद कुर्बान करके उठूंगा, वॉशरूम जाऊंगा, फिर वुजू करूंगा, फिर मस्जिद जाऊंगा, फिर 2 सुन्नतें पढ़ूंगा, फिर 2 फर्ज पढ़ूंगा, पता नहीं इमाम साहब कितनी लंबी नमाज, ऐसे हिम्मत नहीं होगी, जो बेनमाजी उनको हिम्मत नहीं होगी। आपकी रात को आंख खुली, आपको शैतान टोपी कराएगा, अबे इतना नेक बन गया तू, इस सर्दी में तू जाएगा यार वुजू करेगा, फिर ये वो, अबे छोड़ यार, तो शैतान को आप टोपी कराओ, आप शैतान को बोलो मैं इस टाइम पे बस उठ के बिस्तर पे बैठ जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ भी, मैं एक दफा बैठूंगा 5 मिनट बैठ के दोबारा लेट जाऊंगा, तो जब 5 मिनट बैठ जाओगे फिर शैतान कहता है लेट जाना तूने तो 5 मिनट का बोला था। तो आपने शैतान को टोपी करानी है, आपने शैतान को बोलना है, उर्दू में बात करो शैतान से, शैतान को आपने बोलना है कि यार जब उठ ही गया हूं तो वॉशरूम जाने में क्या जा रहा है, थोड़ा रेस्ट रिलैक्स हो जाऊंगा। आमतौर पर सुबह वक्त थोड़ी बहुत पेशाब की हाजत हर एक को होती है आमतौर पर, नहीं तो यार जा रहा हूं वॉशरूम को नलके का हाथ लगा के आ जाऊंगा, तो आप एक दफा वॉशरूम से फारे होके आ जाओ, फिर शैतान कहे लेट जाना, तो अगर मैं लेट रहा हूं सिर्फ वुजू करूंगा, वुजू करके लेट जाऊंगा बस, और कुछ नहीं करना मैंने, मैं आपको यकीन से कहूं आप सिर्फ वुजू करो, उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश बोलोगे यार वुजू भी एकदम। शैतान मायूस होने लगता है, शैतान बोलता है भाई इतनी टोपियां मुझे आज तक किसी ने नहीं कराई है, कहीं और जाके दाल गलाओ, ये बंदा बहुत ढीठ है। आप जब वुजू कर लोगे ना फ्रेश हो जाता है आदमी, हदीस में आता है 3 गिरे शैतान लगा देता है, तो वुजू के बाद 3री गिरा भी खुल जाती है, फ्रेश हो जाता है, फिर आदमी आता है और शुक्र अदा करता है यार कितना अच्छा काम मैंने किया जिंदगी में, पहली दफा मैंने किसी अच्छे काम से दिन की इब्तदा की है। तो ये खूब याद रखो, कम हिम्मती का इलाज ये है कि काम स्टार्ट कर दो आप, और जिनकी पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना उनका भी यही उसूल है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता कोई बात नहीं, आप मेज कुर्सी लेके किताब लेके बैठ जाओ बस, अब बोलो कि किताब को एक दफा खोलूंगा बंद करके वापस चले जाऊंगा, मैं यकीन से कहता हूं जब आप बैठ जाते हो ना किताब खोल देते हो اور قریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ بھی لگا لیتے ہو تو بس آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. تو یہ جو سوچتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا میں یوں کر لوں گا, اتنا نہیں. ہم لوگ بہت سست لوگ ہیں, ہم لوگ کو بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پلان بڑے بناؤ لیکن اس کی جو کام کی ابتدا ہوگی نا وہ اسی سے ہوگی. جاگنگ نہیں ہوتی واکنگ کر لو, واکنگ نہیں ہوتی پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جایا کرو روزانہ, لیکن اس کو پابندی کرو. پھر یہ بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا گلی میں یوں تھوڑا سا نکلے پارک کی طرف جا کے واپس آ گئے, یہ بھی نہیں ہوتا تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. پھر آپ چھوڑ دو کہ آپ دنیا میں کچھ کرو گے, صحیح ہے نا. پھر بہتر ہے چلو میں پانی لو اور ڈوب کے مر جاؤ اس میں, کیونکہ اتنے سست ہوتے ہیں نا. وہی مجھے یاد آتا ہے, ایک بچہ بڑا سست تھا. ابا بیزار آ گئے یار, کمبخت کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ابا ایک مشین لے آئے. ابا نے کہا بیٹا میں نے تیرے کام آسان کر دیے, بٹن دبائے گا جو کام کہے گا وہ ہو جائے گا. بٹن دبا دیا روٹی آ جائے گی, بٹن دبا دیا کپڑے آ جائیں گے. وہ بچہ کہتا ابا بٹن کون دبائے گا, یعنی بٹن دبانے کے لیے ایک الگ مشین لے کر آؤ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. بس جلدی مثال ختم کر دوں میں. مفتی صاحب سب سے پہلے السلام علیکم, میرا بس ایزی پیسہ جائز ہے, لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ایزی پیسہ یا جائز کیش میں جو آپ لون لینا, ہاں وہ جو لون لیتے ہیں نا وہ لون نہیں ہوتا, وہ آپ کو فری وہ کالز دی جاتی ہیں جس کے جو مہنگی کر کے دی جاتی ہیں, اس کو وہ لون سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ 100 روپے کا بیلنس ڈلوا لیں. حالانکہ بیلنس نہیں آتا, 100 روپے میں جتنے کال کے یونٹ ملنے چاہیے نا, جو 80 روپے میں ملنے چاہیے وہ 100 روپے میں مہنگا کر کے دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو یہ لون نہیں ہے, لون تو کوئی پیسہ دے رہا ہو نا, یہ پیسہ تھوڑی, یہ تو آپ کو کالز بیچ رہے ہیں, مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں آپ کو کالز کے یونٹ, کیونکہ چیز ہمیشہ کیش پہ سستی ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ مہنگی ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ لون نہیں ہے. ہم نے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا دیا کہ کام کرو, صلواتیں بھی بہت سنائی, وہ آپ کے بیان میں موجود ہیں, ان کی اصلاح کر دیں, کام کر لیں, بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں. جب وہ کسی کام کے نہیں تھے ان کی شادی کیوں کرائی؟ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. جب بندہ کچھ کر کے ہی نہیں دے رہا, آپ اپنی ذمہ داری پہ شادی کرا لو گے تو اس کو جو موٹیویشن ایک ملتی کہ یار میں اچھا کماؤں گا تو اچھا رشتہ ملے گا, وہ موٹیویشن بھی گئی, وہ تو اور سست ہو جائے گا. آپ جو بھی بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ, تو ہمیشہ شادی کرائیں, اپنے خرچے پہ بھی کرائیں, لیکن اس بچے کی جو آپ کو لگے کہ یہ کچھ کرے گا, یہ اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ کچھ, یہی نہیں کہ صرف 16 بچے پیدا کرے گا یہ. کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کیا کام کریں گے, اب میں 18 بچے پیدا کر کے دکھاؤں گا. تو یہ بھی ایک کام ہے. وہ گلگت میں نہیں, وہ ایک صاحب ملے تھے, ان کے 28 بچے تھے, 4 بیویاں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, یعنی اس کے علاوہ اور کیا کیا کام ہیں آپ کے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, عالم بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں, یونیورسٹی میں بڑے بہت سارے کام کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تو اس کے علاوہ بھی آپ اتنے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, تو خالی یہ نہیں کرنے, دوسرے کام بھی کرنے ہیں. تو ہم جو فیملی پلاننگ کے خلاف ہیں نا, تو خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی کام کو فوکس کریں. آپ نے دوسرے کاموں کے ساتھ نسل کو روکنا نہیں ہے, جتنی اللہ اولاد دے دے تو لے لینی ہے وہ اولاد, اس کے بڑے فائدے ہیں. اچھا بھائی صلواتیں انہوں نے کام نہیں کرتے. بھائی دیکھو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا, یہ واجب الچترول ہوتے ہیں. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے, میں نے جیسے بتایا نا, ایسے پلاننگ کریں, پارک کو ہاتھ لگا کے آ جائیں, اتنا تو کرنا پڑے گا نا, تو آہستہ آہستہ موٹیویشن ملتی ہے. جو اتنا بھی نہ کر رہا ہو اس کا حل میں ایک دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. ہم مدرسے میں رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بیکری تھی. بیکری چھوٹی سی اس لیے کہ کاؤنٹر چھوٹا سا تھا, باقی تو پوری ان کی فیکٹری تھی پیچھے. اس میں وہ میں نے دیکھا پنجاب کی فیملی تھی, وہ بہت اسپیڈ سے کام کر, وہیں وہ باغر خانیاں اور کیکرس انہیں کی وہیں بنتے تھے, اور صبح صبح تازہ تازہ ملتے تھے, بڑا ٹیسٹ ہوتا تھا ان کا, بسکٹ بھی وہ خود بنا رہے ہیں تو ظاہر ایک تازہ چیز بن کے آئے گی. ہم جاتے تھے مدرسے کے, اکثر طلبہ وہیں سے ناشتہ لیتے تھے, بریڈ لینی ہے, کیکرس لینے ہیں, تو سب وہیں سے لیتے تھے. تو میں ان کو دیکھا, بہت ایکٹیو ہیں وہ لوگ. پنجاب کے لوگ آپ کو پتا ہے ویسے بزنس میں ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, سست نہیں ہوتے وہ لوگ. تو اب وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک, باہر خانی بھائی 20 روپے کی چاہیے, ٹھکا ٹھک ایک دم لائے, پیسے لیے, ایسے اسپیڈ میں کام کر رہے ہوتے تھے. اب جو لوگ تاجر ہوتے ہیں نا, ان کا جب بزنس بڑھتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی بلانا شروع کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے نا 18-20 سال کا ایک لڑکا پنجاب سے انہوں نے بلا لیا کہ چل بھائی تو بھی آ جا بیکری میں ہمارے ساتھ. وہ آ گیا, وہ اس طرح کا عادی نہیں تھا. اب ہم نے اس سے, میں نے باہر خانی مانگی, یار 2 باہر خانی لا دے. وہ جا رہا ہے کھجاتا ہوا نا, یوں کر کے ایسے جا رہا ہے, یوں کھجا رہا ہے, چلتا ہوا جا رہا ہے, لا کے دے رہا ہے. वो उसको कह रहे हैं बेटा 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 करके बात करें, भाई थे और वालिद होगा उनका, तो बेटा जरा कस्टमर खड़ा हुआ, ऐसे बिजनेस नहीं होता, ऐसे तुम जा रहे हो बातें कस्टमर आ रहा है ना तो कोई बातें कर रहा है तो कस्टमर से बातें करने में लग गया वो। तो वो मैंने देखा पूरा हफ्ता तकरीबन वो यही ढीलापन, और वो बार बार उसको डांटे यार तू क्या कर रहा है बेटा, ऐसे नहीं होता बिजनेस, बिजनेस में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, ठग अठग निपटाओ लोगों को। बात उसको समझ में नहीं आई। एक दिन मैं आया तो मैंने देखा वो भी उसी स्पीड में ठकाठक आ रहा है जा रहा है ठीन ठीन ऐसे ना बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, पता चला कि जी इनकी फैमिली में ये रिवाज है कि शुरू में इस तरह मोहब्बत से समझाते हैं, नहीं आए तो कमरा बंद करके ना तबीयत से चित्रौल लगाते हैं। तो गालिब गुमान करीब बा यकीन है पुराना किस्सा हो गया, मुझे पूरी तफसील याद नहीं, उसको भी तबीयत से उन्होंने धोया है कि तुझे एक हफ्ते से समझा रहे हैं भाई ये कारोबार का तरीका नहीं होता, रिड़ता रिड़ता जा रहा है वहां जाके फिर बातें कर रहा है, फिर कभी किसी से पूछो मोबाइल तो था नहीं, कभी किसी से बातें कर रहा है, मोबाइल होता तो फिर तो बिजनेस तो बिल्कुल ही खत्म, टिकटॉक पे वीडियो देख रहा होता बैठ के। तो वो तबीयत से उनका रिवाज खानदान में पंजाब में होता है अभी होता है, तबीयत से धो दिया ना उसको, उसके बाद ठकाठक ठकाठक। तो यहां कोई बैठे हुए बहुत माजरत के साथ, तो जो इस तरह का सुस्त होना तभी ये बड़ा भाई और बाप बहुत बड़ी नेमत है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर से जो चीज नहीं, अच्छा ये मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना जो बता रहे होते हैं एक्चुअली हमने स्ट्रगल, इनकी भी पीटे होते हैं बचपन में, अब्बा ने पीटा होता है एक दफा तबीयत से तो ठीक हो गए थे, तो वो पिटने का वाकया नहीं बता रहे होते, ये बताते हैं एक्चुअली हमें ये स्ट्रगल की हमने, कौम सुस्त है इसमें कोई स्ट्रगल वाला इस माहौल में पैदा, मैं खुद भी पिटा हूं सही है ना, जो मैं आज बातें कर रहा हूं बैठ के, मैं भी बड़ा सुस्त था, काम ही नहीं होते थे, सुस्ती, स्कूल नहीं आ रहे, अब्बा लाते थे पाइप पकड़ के कूट देते थे, तो एक हफ्ते के तक अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी पैदा हो जाती थी, एक हफ्ते तक हम बिल्कुल फिट फाट, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीलापन आना था, फिर अब्बा एकदम चित्रौल लगा दिया करते थे, कभी भाई लगा देते थे, मुझसे तो टी की डंडी नहीं लिखी जाती थी ऊपर, मैंने एक वाक्य सुनाया ना, मैं इंग्लिश में एक वर्ड लिख रहा हूं तो इतनी सुस्ती से लिखता था, सुस्ती असल में बाय नेचर सुस्ती नहीं थी, मुझे खेलकूद का दिल चाहता था, पढ़ाई में सुस्ती थी मेरा दिल चाहता था, उधर भागने दौड़ने में हम लगे, तो मैंने टी लिखा है सुस्ती में ऊपर का ना, वो डंडी नहीं डाली ये वाली, खाली ये वाली डंडी डाली, तो ऐसे मैं लिख रहा हूं और ऊपर से डंडियां छोड़ रहा हूं, तो मुझे याद एक जोरदार चमाटा आया ना, गैबी चमाटा आया, एकदम मैं हिल गया, तो मेरे बड़े भाई ने लगाया था थप्पड़, उन्होंने बोला यार तुम इतना क्या लिखो, तमीज से तो लिखो, टी की डंडी तो डालो। उसके बाद से आज तक इस वाक्य को, मेरा ख्याल है ये 80s का वाक्य, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, 87 या 88 की बात होगी, 88 बहुत वंस अपॉन अ टाइम, इतना पुराना तो मैं लग भी नहीं रहूंगा आपको, तो 88 की बात होगी, उसके बाद से आज तक सब कुछ भूल सकता हूं जब मैं टी लिख, मेरे भाई भी ये वाक्य भूल गए होंगे, जब भी मैं टी लिखता हूं ना ऊपर की डंडी आज तक मैंने कभी नहीं छोड़ी, हो सकता है कोई लफ्ज लिख रहा हूं स्पेलिंग गलत लिख दूं, मैं दो तीन अल्फाबेट ही छोड़ दूं, लेकिन जहां टी आएगा तो पूरा आएगा, उसके ऊपर की डंडी कभी भी। तो कुछ चीजें होती हैं जो घर में बहुत सुस्त हो ना, हिल के नहीं दे रहा हो, आपने मोटिवेशनल स्पीकर भी सुना दी उसको, सबकी तकरीरें सुना दी, हमारी तकरीर फिर भी तो बेहतरीन है, एक दफा उसको तबीयत से धो डालो, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। लेकिन आजकल बच्चे बदतमीज इतने हो गए हैं, बड़ा भाई डांट दे तो वो आगे से जवाब दे देते हैं, बाप डांट दे तो आगे से जवाब दे देते हैं, तो इस बदतमीजी वाले माहौल में तो फिर तरबियत नहीं हो सकती भाई। तो इसलिए कहते हैं पहले बच्चों को तमीज सिखाओ, बाद में बाकी चीजें सिखाओ। हर तरह भाई को समझाया, वो भाई बेचारा अल्लाह खैर करे। आपने पिछले जुमे में कहा था मैं पहले खुद को स्टेबल करने का हदफ बनाओ, फिर बाद में माँ बाप को हज करवाना, अगर ऐसा करेंगे तो इस साल हज का सीजन चला जाएगा, तो चला जाए भाई। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं हदफ एक विजन बना रहा हूं कि माँ बाप को हज कराऊं, उनको मैंने कहा था आप गलत चीज को विजन बना रहे हो, आप विजन बनाओ कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊं, मैं पैसा कमा लूं, तो उसके तरीके जब पैसा आएगा तो फिर आपने देखना है कि अब आने के बाद क्या क्या करना है आप, क्योंकि अगर आपने हज को विजन बनाया और आपके पास पैसा आया और आपने हज में खर्च कर दिया तो हो सकता है उससे ज्यादा जरूरी चीजें रह जाएं। कल आप लोगों के सामने भीख मांग रहे हो, हज तो हाजी तो हो गए आप, तो पहले तो एक स्टेबल तो हो जाओ ना, गरीब आदमी पे हज थोड़ी फर्ज है, अब गरीब आदमी प्लानिंग कर रहा हो हज की, तो प्लानिंग में पहले यह देखना है कि अल अहम फल अहम, हज है हर एक पे फर्ज, अगर हर एक पे फर्ज होता ना फिर आप बनाते, या जिन पे फर्ज हो गया वो तो जरूर प्लानिंग करें हज की, लेकिन जिन पे हज फर्ज ही नहीं है, हमारे एक जानने वाले हैं गरीब आदमी है, मुझे पता है बेचारे की थोड़ी सी तनख्वाह है और अभी उसकी उम्र है आगे तरक्की करने की, उसने इतने साल पैसे जमा करके ना उम्रे के पैसे जमा किए, बहुत अच्छा जज्बा था उसका। मैंने कहा देखो आप अभी एक गरीब आदमी हो और आपकी अभी शादी होगी, आपके आगे औलाद होगी, इतनी मुश्किल से आपने ये पैसा जमा किया, उम्रा करना यकीनन बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से आप प्लानिंग करो ना, आप तहज्जुद में कुछ फोकस कर लो, आप कुछ सदका खैरात कर लो, उम्रा तो मालदार लोगों का काम है। तो आपकी, मुझे पता था उस बेचारे की महदूद आमदन है, मैंने कहा आपको अल्लाह नियत हो गई ना सवाब दे देगा, ये पैसे किसी कारोबार में लगा दो फिलहाल, आप जब पैसा आएंगे तो हज भी होते रहेंगे, उम्रे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह, और जो है वो सरोसा लगा लो तबलीग में ताकि दीन पे कायम रहने की तौफीक मिले। तो उम्रा करने से मैं नहीं रोक रहा आपको, लेकिन मैं रोक रहा हूं ऐसी चीज से, देखो इसकी मिसाल ऐसे जैसे नबी की खिदमत में एक सहाबी आए सारा माल लेके कि सारा सदका है, आपने मना किया कि सारा सदका मत करो। अब इश्काल हुआ लोगों को, अबू बकर का तो सारा माल कबूल कर लिया, भाई अबू बकर का जो तवक्कुल है वो लेवल और है, और हर एक का लेवल तवक्कुल का अबू बकर जैसा नहीं होता। तो हमारे नबी ने सहाबा को सारा माल सदका करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया अपने घर वालों के लिए रखो, कल मसाइल आ सकते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो अब आपकी अर्निंग बहुत थोड़ी सी थी, आपने इतने पैसे जमा करके उम्रे पे खर्च कर लिए सारे, उसके बाद कल आपके पास हालात ऐसे आ गए, आप लोगों से भीख मांगते फिर रहे हो, तो उम्रा फर्ज तो नहीं है ना। तो इसलिए मैंने उनको मना किया। अब कोई हो सकता है कोई मेरी वो बात को सुन के बोले यार मुझसे साहब उम्रे से रोक रहे हैं लोगों को, उम्रे से नहीं रोक रहे, हमें पता है इस बेचारे की अभी कम उम्री है, ये जज्बा इसका अच्छा है, लेकिन इसमें वो फिकी बसीरत नहीं है, कल इसके हालात, कल माँ बाप इतने ताने देते हैं, आज आपके पास पैसे नहीं है तो माँ बाप की आंखों का तारा भी वही है, तहज्जुद में दुआएं भी उस बच्चे के लिए होंगी जो पैसे कमा के ला रहा हो। तो फर्ज होता ना फिर तो करना ही करना है, जब फर्ज नहीं है तो नवाफिल पे वो पैसा खर्च करे जिसके पास इजाफी पैसा हो, फिर वो करे, फिर आप हज जब फर्ज हो जाए तो हज तो करना ही करना है। तो जिनके पास कुछ माली गुंजाइश है वो तो हज की प्लानिंग करें, जो खाने को मसाइल चल रहे हैं, गुर्बत महंगाई है, तो फिर हज की प्लानिंग के बजाय आप पैसा कमाने की प्लानिंग कर लो। एक वाक्य सुना के ही मैं बात खत्म करता हूं। मुझे याद है हमारे एक दोस्त थे, उनका बीवी से बड़ा झगड़ा चल रहा था, वो मेरे उस्ताद के पास आए, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं अपनी बेगम को हज करा दूं ताकि बेगम का मुझ पर, मेरा और बेगम पर एक एहसान हो जाएगा तो हो सकता है ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। उन्होंने कहा भाई अगर ताल्लुकात अच्छे कराने के लिए बेगम को हज करा रहे हो ना तो हज के बजाय प्रॉपर्टी लेके बेगम को गिफ्ट कर दो, उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। इतनी नेक बेगमात आजकल मार्केट में शॉर्ट चल रही हैं, ठीक है ना, कि हज करने से वो ज्यादा खुश किससे होगी कि मुझे प्रॉपर्टी मिल गई। हाँ इतनी महंगी प्रॉपर्टी के बेगम के पास जाने का, बेगम पे हज फर्ज हो जाए तो वो तो फिर एक अलग बात है ना, फिर तो वो बेगम को वाजिब हो जाएगा कि बेच के हज करे वो, यानी उससे थोड़ी सस्ती हो। तो मैं बैठा था, मैंने कहा इसका हज का अच्छा विजन था लेकिन कितने बड़े बुजुर्ग उसको रोक किससे रहेंगे, तुम्हारा मकसद क्या है, ताल्लुकात अच्छे कराना ना, तो बेगम को हज करा के आजकल इतने अच्छे वो होते हैं लेकिन बहुत नेक बेगमें होनी चाहिए उसके लिए, वरना आजकल बेगम कहती है हमें गोल्ड बना के दे दो, हमें कोई प्रॉपर्टी लेके दे दो तो ताल्लुकात अच्छे इससे होंगे, और जब एकदम अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे ना फिर हज पे जाओगे तो वहां भी आपके साथ अच्छा गुजारा होगा। अभी फड्डे वैसे ही चल रहे हैं, हज पे ले गया ना तो ये ताल्लुकात, हज पे तो ताल्लुकात इतनी टेंशन होती है और ताल्लुकात खराब होने का खतरा होता है, अरफात के मैदान में और मुजदलिफा में बड़े मसाइल होते हैं, पैदल चलना पड़ता है। तो मुझे उनकी फिकी बसीरत पे बड़ा रश्क आया कि यार जाहिर परस्त आदमी तो कहेगा हज से रोक रहे हैं लेकिन अकलमंद कहेगा भाई ये एक ऐसे काम से रोक रहे हैं जिससे मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे होने के बजाय खराब होने का। हाँ जिनके पास बहुत ज्यादा, उसके पास महदूद आमदन थी, ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा है वो जरूर बीवी को हज कराए, उससे ताल्लुकात अच्छे ही होंगे क्योंकि उनके घर में मसाइल गुर्बत महंगाई के चल रहे हैं, टाइम पे राशन नहीं आ रहा और बातें हो रही हैं बेगम को हज कराने की, तो वो आलिम को पता था इनके घर में माली वसाइल ज्यादा नहीं है इनके पास, तो अब वो पैसा जमा करके हज करा के ताल्लुकात अच्छे कराना चाह रहे हैं। तो जाहिर है वो तो जब दोबारा हज के बाद आएंगे, जब टमाटर के पैसे नहीं होंगे तो सारे तो आपने हज पे लगा दिए, भिंडी के पैसे नहीं होंगे तो और लड़ाइयां होंगी, बेगम कहेगी हज गया एक तरफ भाई मुझे खिला भाई तू। तो इसलिए जो महदूद आमदन जिन लोगों की है तो वो ऐसी प्लानिंग ना करें, वो पहले आमदन बढ़ाएं, जब आमदन आ जाएगी तो फिर उसमें कहें कि यार सबसे पहले किसको फोकस करना है, हज को, अल्लाह के घर की ज़ियारत को, मेरे साथ अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, मेरी अब दुनिया में ट्रैवलिंग शुरू हुई, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी अल्लाह सबसे पहला बैरून मुल्क सफर मेरा बैतुल्लाह का हो, तो मेरी एक तमन्ना थी कि सबसे पहला मेरा सफर मुल्क से बाहर हज का सफर होना चाहिए, तो अल्लाह ने वो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल की, मैं दुनिया में जहां भी गया हूं सबसे पहला मेरा सफर हुआ حج کا, اور میں نے یہ بھی کہا اللہ میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا, مجھے پہلے حج کرا, فرض پورا ہوگا تو پھر مجھے عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا, بھئی ایک ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. تو اللہ نے کہا میرے پر احسان ہوا کہ میرا پہلا سفر جو ملک سے باہر ہوا, وہ ایک اور سفر بھی ہوا تھا, وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی, تو جو آفیشلی جو سفر ہوتا ہے نا وہ ہوا میرا, وہ حج کا سفر ہوا. تو میں نے کہا اب دنیا میں جاؤں, پہلی دفعہ آدمی جائے گا ہاں بھائی ملک سے باہر نکلے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو بھائی سب سے اول درجے پہ حج کو رکھو, وسائل نہیں ہیں تو پھر حج کی پلاننگ بناتے بناتے جو بہت سارے اور بھی ضروری کام ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے. حج کر کے آ جاؤ گے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے, اس کے بعد پھر وہی ماں باپ بولیں گے بیٹا اب ہماری بیماری کے پیسے ہیں نہیں تیرے پاس, ہمیں علاج کرانے تو سر تو نے حج پہ لگا دیے. اور حج میں بھی بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے انسان, بوڑھے لوگ تو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتے ہیں. پرچی دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے آج ان کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر میں حج کروں گا بھی, کراؤں گا بھی, عمرے بھی کروں گا, زکات صدقات بھی دوں گا, خیرات بھی کروں گا. آنے دیں, آنے سے پہلے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی اچھی نہیں لگتی ہیں باتیں. آئندہ یہ پرچی میرے پاس نہیں آنی چاہیے ورنہ میں تجھے حج کرا دوں گا, بتا رہا ہوں میں, ایک سال سے پرچی آ رہی ہے میرے پاس. مفتی صاحب زلفوں کی شرعی حیثیت بیان کریں. بھائی زلفیں رکھنا جائز ہے, بال بڑے رکھنا, دیکھو شریعت میں تین کیفیتیں, یا تو پوری ٹنڈ کرا کے رکھو, لوگ شیر پڑھیں حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڑانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ ٹنڈ پہ اچھے چمکتی ہے ٹنڈ کے اوپر. دوسری آپشن یہ ہے کہ بال چھوٹے رکھو لیکن چاروں طرف سے برابر. یہ جو کہیں سے بال چھوٹے کہیں سے آج کل نئے نئے فیشن آ رہے ہیں بالکل عجیب عجیب قسم کے, یہ صحیح نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور تیسرا بڑے بال رکھنے تو پٹے والے بال رکھو, سارے بال پیچھے لے جاؤ, یہاں سے جتنے چاہو بڑھاؤ, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, کندھوں تک بھی لا سکتے ہو. کندھوں سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, جائز وہ بھی ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جائز یہ بھی ہے کہ کندھوں سے نیچے بھی رکھ سکتے ہو, لیکن اتنے بڑھتے ہی نہیں مردوں کے بال. لیکن بہتر علماء کہتے ہیں کندھوں سے نیچے نہ جانے دو, کندھے ہو جائیں تو پھر کاٹ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک پہنچتے تھے, اب کاٹتے تو کانوں کی لو تک آ جاتے, پھر بڑے ہو جاتے. مجھے بڑے بالوں میں فائدہ یہ ہے کہ میں عمرہ کرتا ہوں نا, ایک انچ بال کاٹ لیتا ہوں تو اس میں دس عمرے اور ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یہ کیا کاٹے ہیں آپ نے بال, اس میں تو دس عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی بڑے بال کا ایک بڑا فائدہ ہے. تو جو جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کو سر مڈانا پڑتا ہے. تو پہلی دفعہ جب ہم نے حج کیا عمرے کیا تو سر مڈانے کی سنت زندہ کر لی. اب ہم نے کہا چلو اب قصر کی بھی, قصر بھی جائز ہے, قصر کا مطلب بال کٹوانا. تو آپ بڑے بال رکھ سکتے ہیں, شریعت میں جائز ہے, جتنے چاہیں بڑے رکھیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ کندھوں سے زیادہ نیچے نہ جانے دیں. جانے دے تو بھی ٹھیک ہے. اچھا آج کل لڑکوں نے بالوں میں چٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہے پیچھے, سو بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں چٹیاں بنا کے گھوم رہے, تو یہ بھی جائز ہے. فقہا نے صدیوں پہلے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت اگر چٹیاں بنا کے غسل کرے گی تو غسل ہو جائے گا, چٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مرد کے بڑے بالوں اور اس نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا ہو تو وہ اگر غسل فرض غسل کرے گا تو اس کو وہ جوڑے کو کھولنا پڑے گا. تو بنانا جائز تھا تبھی تو علماء نے لکھا نا. تو اگر آپ کے بڑے بال ہو گئے ہیں, میرے تو اب رہے نہیں بال, چار شادیوں کی وجہ سے نا تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اس عمر میں یہ بھی غنیمت ہے. میرے تو جب آپ اگر دس سال پہلے بال دیکھ لیتے بہت ہی گھنے بال اور یہاں یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. تو چار کی وجہ سے نہیں, عمر کا بھی ایک دخل ہوتا ہے اس میں. تو جتنے بڑے بال رکھ لو آپ, لیکن بہتر کیا ہے کانوں کی لو تک لاؤ, جب یہاں تک آ جائیں تو پھر کاٹ کے چھوٹے کر دو, اس طرح سے. تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. آپ کو جو سوٹ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زینت کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے. تو جو آپ پہ سوٹ کر رہا ہے وہ کام کرو. شریعت نے خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگائی ہیں, جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کام کرو یار, بس دیکھنے میں اچھے لگو آپ. میں آڑے ترچے بال نہ کاٹ دو کہ یہاں سے وہ جو چوہا نہیں ہوتا کانٹوں والا, وہ کس بال یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے گنجے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب جائز نہیں ہے. تو نارملی جو آپ پہ جو ہلیا اچھا لگ رہا ہے وہ رکھو بھائی. اچھا بھائی مفتی صاحب اگر کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہاتھ یا جسم پر کیا بنایا ہوا ہے, ٹیٹو بنایا ہوا ہو تو سلام اسلام اچھا قبول کرنے کے بعد اس کو کیا مٹانا لازمی ہوتا ہے؟ جی لازمی ہوتا ہے اگر ممکن ہو, اگر ممکن نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو. یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, آپ نے لعنت فرمائی ہے جسم گندوانے پر. لیکن اب کر لیا آپ نے کام تو توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب ہٹوا سکتے ہو تو ہٹا دو, نہیں تو چھوڑ دو اس کو. بس اب جو کام ہونا تھا ہو گیا, ریورس نہیں ہو سکتا. وہ میں نے سنا ہے کہ جہاں فرض ادا کریں وہاں سنت نہیں ہو جاتی ہے، بھائی جہاں چاہو سنت پڑھ لو، بہتر ہے اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ. کیا نکاح کے بعد جتنے دن رخصتی میں تاخیر ہو تو کیا ہر دن گناہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا بھائی، آپ کی بیوی ہے. ڈراپ شپنگ میں یہی ہوتا ہے، سودا ہو جاتا ہے، ڈلیوری جو بازا با دو دن بعد ہو رہی ہوتی ہے، دو تین دن بعد، تو ایسے ہی نکاح میں بیگم آپ کے نام ہو گئی، اب ڈلیوری آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی جب چاہیں رکھ لیں. آپ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے پراٹھوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی کتنے انڈے پراٹھے ہضم کرتے ہیں. تو جو جتنے زیادہ ہضم کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ڈلیوری ہو، اور جو دھنیے پودینے پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. دو سال، تین سال، پتہ نہیں بیٹھتے کیسے ہیں یہ لوگ. میں تو حیران ہوں یار، اللہ نے بیوی کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے مرد کے لیے، عورت کو، کہ کیسے ایک سال رخصتیوں میں تاخیر کرتے ہیں. کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے بھائی. آدمی کا جب ظاہر ایک جگہ نکاح ہو گیا، اس کی بیوی بن گئی، وہ تو اگر مرد کا بچہ ہوگا تو ہر وقت کھوپڑی کہاں جائے گی؟ ادھر ہی گھومے گی یار. میری بیگم میں حلال ہے میرے لیے. تو اب یہ لوگوں کے دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے. ہائے ہائے ہائے، خوراکیں ٹائٹ کر لو، چار شادیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور جلدی رخصتی جو شریعت نے حکم دیا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. خوراک گٹکے چھوڑ دو تو سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب دیکھو، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا، میں نے چار شادیوں میں بیان کیا، ایک بوڑھے میاں آئے، وہ بہت بحث کی مجھ سے، انہوں نے اتنی بحث کی نا کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. تو ایک اور بوڑھے آئے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو اب یہ بوڑھے ہو گئے مفتی صاحب، اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، جوان کی سمجھ میں آئے. اس لیے بہت سے بوڑھے تو مجھ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کاش آپ 20 سال پہلے ہمیں مل جاتے یار، بہت لیٹ ملے ہو آپ. لیکن بہت سے بوڑھے دیکھنے میں بوڑھے لگتے ہیں، حقیقت میں بوڑھے نہیں ہوتے. میں نے واقعہ سنایا تھا نا اپنے اس شیخ کا، شیخ کے اس والد کا، 80 سال میں انہوں نے نکاح کیا، اولاد بھی ہوئی، تو ان کے ریلیٹو مجھے ملے، انہوں نے کہا مجھے صاحب 80 سال میں نہیں 90 سال میں نکاح ہوا تھا. تو کریکشن کر لیں، 80 میں نہیں بلکہ ان کا نکاح 90 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور ان کے الحمدللہ اولاد بھی ہوئی ہے. تو خوراک اور یہ جو اپنی باڈی کا، جو جسم کی مینٹیننس کا بڑا خیال کرتے ہیں نا، صحت کو مینٹین رکھتے ہیں، بعض اوقات 100 سال جیتے ہیں وہ لوگ. اور دوسری بات یہ جو میں نے مفتی عتیق الرحمان شہید رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا، آج اثر کے بعد ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کے والد کا واقعہ سنایا تھا نا، مفتی عتیق الرحمان شہید رحمتہ اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے، شہید ہو گئے تھے. تو 6 مہینے بعد ان کی قبر کھولی تو ان کی جسم بھی سلامت تھا اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. کرامتوں کے واقعات میں نے بتایا تھا نا، کچھ واقعات ہم نے بھی سنے بھی ہیں، کچھ دیکھے بھی ہیں. تو اور میں نے کہا ان کو ان کی جگہ سے شفٹ کیا جا رہا تھا، تو آج ان کے بیٹے سے کئی سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا وہ سب آپ نے بیان جو سنایا ہے نا، وہ واقعہ ایسے نہیں ہے، آپ کو تھوڑی بھول ہوئی ہے، شفٹ نہیں کر رہے تھے ہم قبر، بلکہ سیلاب کی وجہ سے قبر کھل گئی تھی، تو جو ان کی جو قبر کی سلیبیں وہ ٹوٹ گئی تھی، تو قبر ریپیئر کر رہے تھے. تو ایک کریکشن تو یہ کر لیں کہ وہ میت کو وہاں سے ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے بلکہ قبر کو ریپیئر کر رہے تھے. دوسری بات انہوں نے کہا 6 مہینے بعد ہم نے قبر نہیں کھولی تھی، 13 مہینے کے بعد ہم نے قبر کھولی تھی. تو باڈی بھی بالکل سلامت تھی اور خون سے خوشبو آ رہی تھی، اور بھائی کے جسم پہ جو تھوڑا سا خون لگ گیا نا ان کا میت کو سیٹ کرنے میں، وہ پھر 4-5 دن تک ہاتھ دھونے کے بعد بھی خوشبو آتی رہی ہے. اور اس کا تو میں بھی گواہ ہوں شہیدوں کے خون کی خوشبو کا. میں نے ایک شہید کی میت کو صرف یوں ٹچ کیا تھا یہاں پیشانی پہ، تو میرے ہاتھ سے بہت دیر تک بہت اچھی خوشبو آتی رہی ہے. اور وہ شہید کے جو روئی رکھی ہوئی تھی نا چاروں طرف، وہ روئی میں گھر لے کر آ گیا تھا 1 ہفتے تک، حالانکہ اس کا خون کا نشان بھی نہیں تھا، 1 ہفتے تک اس روئی سے خوشبو آتی رہی ہے. وہ خوشبو نہیں تھی جو آپ اتر میں لگاتے ہیں، کیونکہ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی بھی ہے، تو سب کی سیم ہوتی ہے، وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. وہ تو یہ کرامت ہے اللہ کی طرف سے ہوتا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ 13 مہینوں تک تھا، آپ نے 6 مہینے کہہ کے یہ غلط. تو کہتے ہیں پھر ہمارا یہ ارادہ ہوا تھا کہ میڈیا کی ٹیم کو بلائیں، لوگوں نے ہمیں کہا کہ بلاؤ ان کی ویڈیو بناؤ اور دیکھو. تو کہتے ہیں پھر ہم نے کہا یہ نہیں، ہم نہیں یہ کام کریں گے، بس جو ایک اللہ کا معاملہ تھا ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ کریکشن کر لیں کہ وہ جو 80 سال کے بزرگ تھے نا، جنہوں نے شادی کی تھی، دوسری شادی کی تھی اور ان کی اولاد ہوئی تھی، تو وہ 80 کے نہیں تھے، وہ کتنے کے تھے؟ 90 کے تھے. میرے نانا کا انتقال، بہت لمبا سوال ہے بھائی، اتنے میں ہم لوگ کا انتقال ہو جائے گا، پورا سوال پڑھتے پڑھتے. نانا کا انتقال تو ہو گیا، اب ہمارا کیوں انتقال کر لو؟ اتنے لمبے سوال دارالافتاء میں جمع کرا دیا کرو، اتنا لمبا سوال ہے. مفتی صاحب ابرار کے لیے دعا کریں. دل سے دعا ہے جی، اللہ ابرار کو ابرار بنا دے. ابرار بر کی جمع ہے، بر نیک آدمی کو کہتے ہیں. مفتی صاحب کراچی اجتماع سے پہلے خدمت کی فضیلت. بھائی خدمت تو تواضع پیدا ہوتی ہے, جتنا آپ کسی کام میں حصہ ڈالیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. میری بیوی اکثر مجھ سے لڑتی ہے مگر لال بیگ سے بہت ڈرتی ہے. جب بھی کچن میں لال بیگ آ جاتا ہے تو مجھے ہوٹل سے کھانا لانا پڑتا ہے. لال بیگ مجھ سے کہتا ہے کہ میں کہ تجھ سے بہتر ہوں, کم از کم تیری بیوی مجھ سے ڈرتی تو ہے. تو جیب میں لال بیگ رکھ کے گھما کرو پھر, تاکہ بیگم ڈرتی رہا کرے. ایک مشہور یوٹیوبر ہے, اس نے شغل لگانے کی, ابے یار یہ نہیں لوگوں کے, وہ مشہور یوٹیوبر کا اس نے لکھا ہے اس نے یہ کیا ہے, تو میں بتاؤں گا تو وہ سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی. شخصیتوں پہ نہیں نام لے کے رد کرنا چاہیے, یہ اصلاح کا قطن صحیح طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے اصلاح کرنی ہے آپ نے کسی بندے کا نام لے کے کہہ دیا کہ یہ یوٹیوب پہ آ کے یہ کر رہا ہے تو اصلاح تھوڑی ہوگی, تو آپ نے بے عزتی کر دی اس کی سب کے سامنے. تو وہ تو میں ایک جنرلی ایک بات کرتا ہوں بھائی, ولاگ آپ بنائیں ضرور. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار یوٹیوب پہ چینل کو مونیٹائز کرو تاکہ باہر سے پیسہ آئے پاکستان میں ڈالر میں. دیکھو جو جن کے پاس یوٹیوب کی ارننگ آ رہی ہے نا, یہ فیس بک کی یا ٹک ٹاک, ٹک ٹاک پہ چھچور بنانا کرو, چاہے چیزیں بھی ٹک ٹاک پہ آ سکتی ہیں, کام کی چیزیں ڈالو ٹک ٹاک پہ, مزاح بھی ڈال دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں کوئی, ابھی کل میں نے میں اتنا تھکا ہوا تھا نا سفر میں, کل میں نے ٹک ٹاک میں مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی, میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی, اتنا زور سے میں کہکا لگا کے ایسا ہوں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, اچھا اس کے پیچھے ایک مشہور ڈائلگ چل رہا ہے, وہ پروگرام تو اڑ گیا نا, وہ کیا ہے اس سے پہلے الفاظ کیا ہیں, پروگرام جاری رہا یا ختم کیا, پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو اڑ گیا. تو اس پہ ایک مولوی صاحب نا تقریر کر رہے اسٹیج پہ, ایسے ہاتھ ہلا ہلا کے, اتنے میں ایک بچہ آیا نا, وہ ہاتھ ہلایا تو بچے پہ لگا, بچہ بےچارا اسٹیج نیچے گرا. تو اس سے کسی نے ڈائلگ چلایا کہ پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا, کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا, اور وہ جو بڑھ گیا کہ لفظ آیا اس بچے کو جب چماٹ لگا نا, پروگرام تو بڑھ گیا, واقعی یہ سارا پروگرام بڑھ گیا. وہ ایسی ہنسی آئی ہے, میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. تو میں نے کہا یار اس سے کوئی مفید کام نہیں کیا, لیکن کم از کم ہنسا دیا ہمیں یار, ہم ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے تھکے ہوئے, تھوڑی سی تفریح مل گئی ذہن. لیکن یہ کام مت کرو یار, لیٹرین میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دکھا رہے ہو, میں صبح اٹھتا ہوں میں, میری بیوی جا رہی ہے, میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے, اپنی دلہنیں کیوں لالا کے یوٹیوب پہ دکھا رہے ہو یار. تو اور ان سے لوگ احساس کمتری کا شکار بھی ہو رہے ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اتنی خوبصورت مل گئی, ہمیں تو آڑی ترچھی ملی ہے. ابے وہ ابھی لگ رہی ہے نا, یہ ڈینٹنگ پینٹنگ وہ جب یوٹیوب میں آئی ہے تو پورا ڈینٹنگ پینٹنگ, پورا باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ طریقہ غلط ہے اپنی بیویوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, اپنی جوان بیٹیوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, یہ پیسہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے بھائی, اس کو غیر اخلاقی حرکت ہے. اس کو پھر گرل فرینڈ کو لے کر آ رہے ہیں, اس سے گرل فرینڈ کلچر کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. گرل فرینڈ کو لانا تو آپ بتا رہے ہو کہ میں زانی ہوں, بدکار ہوں میں. آج کل گرل فرینڈ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جب ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا ہے, گرل فرینڈ کا مطلب فزیکل ریلیشن بھی سمجھائیے جاتا ہے. تو آپ کیوں اپنے بارے میں بتا رہے ہو, میں بدکار ایک نمبر کا منہ کالا کرنے والا آدمی ہوں, میں بدکار آدمی ہوں, میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, میں فیملی والا آدمی نہیں ہوں. میں پیغمبروں کی سنت کیا ہے, شادی کر کے عورت کے ساتھ رہنا, اور گدے گھوڑے شادی کر کے رہتے ہیں, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا. تو کتے بلی گدے گھوڑے والا کام ہے یار, کوئی بھی جو اچھی لگی اس کو لے کے, گدا بھی لفٹ کراتا ہے پہلے شروع میں. تو اب گرل فرینڈ کو لا رہے ہیں یوٹیوب پہ ولاگنگ میں, تو آپ بتا رہے ہو دنیا کو کہ میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, کتے بلیوں والی میری زندگی ہے. تو آپ جو ہے اگر اپنی شادی کا ولاگ بھی ڈالنا ہے تو یہ تہذیب کے دائرے میں ڈال دو, بچے کے پیدا بچ پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں. اپنی بیوی کیوں دکھا رہے ہو, تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا, اس سے کیا مقصد ہے دنیا کو بتانا, اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا, کیا ہوگا اس سے. تو عجیب سے حساب کتاب ہے, ولاگنگ کرو, کوئی گارڈننگ دکھاؤ, کوئی جاگنگ دکھا دو اپنی, دیکھو میں بھاگ رہا ہوں تم بھی بھاگا کرو, کچھ بھی کرو آپ, لیکن تفریح مل جائے لوگوں کو, لیکن ایسی تفریح جس سے دماغ فریش ہو. دیکھو تفریح تو اس سے بھی مل جائے گی, ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دو اپنی ویڈیو, یہ کوئی عقل مندوں کو اس سے کوئی تفریح نہیں ملے گی. ناک میں انگلی گھماتے ہوئے دکھا دو اپنی, تفریح تو اس سے بھی آ جاتی ہے, لیکن کوئی بے وقوفوں کو ملے گی اس سے تفریح. اب وہ جو اس نے کیا ہے نا, وہ جو تھپڑ لگا دی, وہ جان کر تھوڑی کیا ہے. اگر یہ جان کر بنایا ہوتا پھر ہم تو اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. ابھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو کیا, بے وقوف تو بےچارے سے بےچارا بھی نہیں کہنا چاہیے, تم ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہیں, گما رہے ہیں اور پروگرام تو اڑ گیا. وہ بڑا اچھا لگا, تو پروگرام تو اڑ گیا بھائی, پروگرام جاری رہا جاری نہیں رہا, کہنے پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو اڑ گیا. बड़ा मजा आया। अच्छा भाई, तो इसलिए पैसा कमाने के जो डॉलर में कमाओ उससे फायदा ये होगा कि जब आपको इतना मिलेगी ना, डॉलर महंगा हो गया है तो आपकी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग सोशल मीडिया से आ रही होगी, डॉलर में आ रही होगी, तो आपकी सेहत पे फर्क नहीं। तो पाकिस्तानियों के पास ना सब कुछ खत्म हो गया मेरे भाई, अभी यही एक बचा है, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स की तरफ आओ, इधर से चीज खरीद के उसको पहनाओ। दुनिया, ये इंटरनेट ने ना दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, ये हमारे फायदे में गया। आपको पता है गोरों को इससे इतना फायदा नहीं है जितना हमको फायदा है, हमें इससे अगर हम सीख लेंगे। वजह उसकी है कि जब आप एक ग्लोबल, पहले ताजर को जाना पड़ता था अमेरिका, अब ऑनलाइन अमेरिका और पाकिस्तान का फर्क खत्म। मैं गया हूं ऐसे मुल्कों में, इंतहाई गरीब लोग एक दिन भी स्कूल नहीं पढ़े, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कैसे? कह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, इंग्लिश भी नहीं आती उनको, कहते इंटरनेट पे ही हमने टूटी फूटी सीख ली ऑनलाइन। इतना उन्होंने कर करके ना छोटी मोटी चीजें बेचना शुरू की गोरों को। यहां से लोग देसी घी भेज रहे हैं गोरों के पास, सलाजीत भेज रहे हैं गोरों के पास, गोरे भी ऑर्गेनिक चीजों पर आ रहे हैं। अब एक आदमी सलाजीत की दुकान खोल के बैठा हुआ है देसी घी, कितने भेज देगा डब्बे यार वो? अगर आप ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो, कस्टमरों की एक लाइन लगी होगी आपके पास। लेकिन सीखो तो सही ना, बैठा हुआ है सुबह उठ के प्लानिंग कर रहा हूं पैसा कमाने की, आई नहीं रहा तो प्लानिंग पता नहीं क्या कर रहे तू बैठ के। तो मैं तो दुनिया में चला फिरा हूं, मैं अगर मौलवी ना होता ना तो मैं यही काम कर रहा होता बैठ के, लेकिन मैं तो मौलवी हूं, मेरे तो मदरसे में पढ़ाना है, फिर तफसीर की रिकॉर्डिंग है, ये बीसियों किस्म के काम है। वरना इस जमाने में तो भाई बहुत आसान हो गया है, इंटरनेट ने पैसा कमाना बहुत आसान कर दिया है। अब तो वो काबिलियत और वो डिप्लोमा की भी जरूरत नहीं है आपको। तो वो मैं जाता हूं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने घर बनाया, पाकिस्तान में नहीं है, किसी गरीब मुल्क में है वो। मैं वहां गया उनके घर, मैंने देखा इतना लकड़ी का, उन्होंने ना सबसे खुशबूदार लकड़ी का पूरा घर बना दिया। मैंने कहा हालांकि गुटखा खाते हैं, उनको मना भी कर रहा हूं ये ना खाया करो। कह रहे हैं मैं रात को जागता हूं इंटरनेट पे ना, क्योंकि मेरी गोरों से जो है चैटिंग हो रही होती है तो मुझे गुटखा खाना पड़ता है। मैंने उसको उनको दूसरे तरीके बताया कि गुटखा आपको लेट हुएगा एक दिन। खैर अब पान पे आ गए तो क्या, कुछ भी नहीं है, धोती पहनते हैं और बनियान पहन के घूम रहे होते हैं, कोई देख ही नहीं सकता ये आदमी करोड़पति है। तो वो क्या है, गोरों से करते करते बिजनेस होते होते भाई अब तो शिप के जरिए उनका माल आ रहा है, शिप के जरिए माल जा रहा है। तो अब आपको वो जरूरत ही नहीं है वीजे लगवाने की और ये करने की, इंटरनेट की में जब आप घुस गए तो आपका पूरी दुनिया से राबता हो गया। तो बहुत अल्लाह ने पाकिस्तानियों, और मैं इसलिए इस पे इतना बोल रहा हूं, जो माहिरीन कहते हैं पाकिस्तानी जिस कस्मा पुरसी से गुजर रहा है ना, उसके पास अब इसके अलावा इस अजाब से निकलने का रास्ता है नहीं, इस अजाब से निकलने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो डॉलर में आप कमाएंगे, मुल्क को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी दुकानें बंद कर दें, दूध की दुकानें बंद कर दें, घी की दुकानें बंद, भाई आप जैसे यहां एक आपकी फिजिकल दुकान है तो इंटरनेट पर भी आप एक डिजिटल दुकान खोल लो ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप एक डिजिटल दुकान खोल लो यार, कितना टाइम लगता है, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे हैं, स्कूलों में ये चीजें पढ़ाई नहीं जा रही हैं। तो एक दुकान खोल लो आप, देखो क्या होता है आपके साथ। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने भी ऐसे किया, बर्तन बेचते थे वो, वही रोते ही रहते थे हर वक्त बैठ के। फिर उन्होंने इंटरनेट पे बिजनेस शुरू किया, आज बर्तनों से इतना कमा लिया उन्होंने पैसा। तो पैसों की हवस पैदा ना करो, लेकिन जरूरत तो है ना, बहरहाल कब्रुस्तान भी जाओ और इंटरनेट पे भी बैठो, दोनों काम, ताकि एतदाल में रहो, हवस पैदा ना हो आपके अंदर, लेकिन जरूरत पूरी हो, मुल्क की जरूरत है ये। और मुल्क तरक्की करते हैं जब लोग तरक्की करते हैं। अब हुकूमतों पे एतमाद करना छोड़ दो, जिसने गवर्नमेंट पे, पाकिस्तान में गवर्नमेंट पे एतमाद किया कि कल हमारे मुल्क के हालात, हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बनाएगी बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, आप कब्रुस्तान पहुंच जाओगे मुल्क के हालात हमें नहीं लगता अच्छे होंगे। आप खुद अच्छे हो जाओ तो मुल्क के हालात ऑटोमेटिकली, जब लोगों के पास ऐसा आएगा तो मुल्क खुद बहुत तरक्की करेगा। तो इसलिए आप इस तरफ आए, जो भी कोई किसी के अंदर काबिलियत है ना, वो कोशिश करे उसको कैश कराने की, अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मदीना जाने के बाद बाजार कायम किया वहां, ताकि यहूदियों के हाथ से तिजारत निकल के सहाबा के हाथ में आए।